प्रेमा, इसकी प्रेमा प्रेमिका को हमेशा स्मरण करते रहते हैं और साथ साथ में भी अपना कार्य जो है बहुत ही जागरूकता से। ये उदाहरण चैतन्य महाप्रभु ने दिया था, जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी उन्होंने खत लिखा था कि हम आपके आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं, तो तब वह मंत्री थे नवाब हुसैन शाह का, तो फिर उसके उत्तर में उन्होंने ऐसा लिखा कि आपको एक ऐसा असाध्य स्त्री की तरह रहना चाहिए, इसको कोई समझ नहीं समझे नहीं समझे, लेकिन रूप गोस्वामी उसको समझ लिया उन्होंने, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के हृदय को जानते थे। तो ऐसे प्रोपर लेते वहां पर वो लिखते हैं, इसके लिए एक सेंस ऑफ लव, एक ऐसे प्रेम का क्या होना चाहिए, इसके लिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना चाहिए, देयर शुड बी अ सेंस ऑफ स्ट्रांग सेंस ऑफ लव, ऐसे बोलते। तो तब क्या हो जाता है, भगवान को हमारा कर्म करते हुए भी भगवान को भी निरंतर हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए लेकिन हमें प्रेम भाव उत्पन्न करना होगा। उदाहरणार्थ अर्जुन सदैव कृष्ण का चिंतन करता था और वह कृष्ण का नित्संगी था, और साथ ही में योद्धा भी, कृष्ण ने उसे युद्ध करना छोड़कर जंगल जाकर ध्यान करने की कभी सलाह नहीं दी। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को योग पद्धति बताते थे, अर्जुन कहता है कि इस पद्धति का अभ्यास कर सकना उसके लिए संभव है, तो फिर छठे अध्याय में जाता है। तो ऐसे भगवान श्री प्रभुपाद उसको वर्णन करते, इस तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी वही बताते कि भगवान यहां नहीं कहते अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान यह नहीं कहते हैं कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे, मनुष्य में करते हुए साथ 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 हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है, इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सो असंशय है, संदेह नहीं है, ऐसे बोल रहे। अभी क्या हो गया समाज में, वृत्ति और भक्ति वो अलग हो गया पूरा, क्योंकि वृत्ति इतना उग्र कर्म होता है, वो भगवान को स्मरण निरंतर स्मरण करना तो छोड़ दीजिए, वो 16 माला जो बताया गया है उसको करना मुश्किल हो जाता है। हम चर्चा कर रहे थे ना, तो इसलिए समाज में ऐसे व्यवस्था होना चाहिए ताकि लोग शांति से अपना कर्म कर सकते हैं, साथ साथ भक्ति भी कर सकते हैं। अभ्यास योग युक्तो न चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानु चिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। सो अभ्यास योग युक्ते न चेतसा नान्यगामिना, यहां पर दूसरा मार्ग बता रहे। तो अभ्यास योग या साधना भक्ति को भगवान वर्णन कर रहे। तो अभ्यास योग मतलब साधना भक्ति। अभ्यास योग युक्ते न चेतसा नान्यगामिना, तो चेतना को ध्यान में लगे रहकर मन तथा बुद्धि न अन्य गामिना बिना विचलित हुए परमं पुरुषं दिव्यं याति पातानु चिंतयन्। सो परमं पुरुषं, सो परम पुरुष के ऊपर जो दिव्य है उनके हे पार्थ अनुचिंतन करो, ऐसे कह रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद, अभ्यास योग में क्या होता है, मन नहीं लगता है। जैसे पिछले श्लोक में क्या बताया उन्होंने, निरंतर स्मरण करो बोले, लेकिन मन नहीं लगता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। प्रभुपाद यहां पर तात्पर्य में फोर्स द माइंड, हमें बलपूर्वक मन को लगाना चाहिए, ऐसे कहते हैं। तो कभी कभी लोग पूछते हैं ना, या बताते हैं प्रभु जी, या आपको पूछेंगे क्यों जप नहीं किया, मन नहीं लग रहा था, ऐसे बोलते हैं वो लोग। मन नहीं लग रहा था मतलब मन को लगाना है वहां है ना, फोर्स, इसको ही अभ्यास कहते हैं। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, हम लोग इसके बारे में छठे अध्याय में चर्चा कर रहे थे हम लोग। यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलम् अस्थिरम्, ऐसे। तो हमें प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना, उसको बाध्य करना है, तो उसको ही अभ्यास कहते हैं। सो ये साधना भक्ति क्या है, रेगुलेटेड डिवोशनल प्रैक्टिस, विशेष करके वैदिक साधना भक्ति, उसको ऐसे अभ्यास किया जाता है। वहां पर भी ऐसे बताया जाता है कि शास्त्र के जो आदेश है और आध्यात्मिक गुरु के आदेश है, उसको करना है। देर इज नो क्वेश्चन ऑफ रेफ्यूजिंग बोलते, कोई नकारने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो ऐसे मन को लगाना चाहिए, उसको अभ्यास योग कहते हैं। और यहाँ पर ऐसे जो अभ्यास करते हैं, प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे, कैटरपिलर एक प्रकार यहाँ पर अनुवाद देखो कैटरपिलर को क्या बोलते हैं, एक प्रकार का एक कीट तो एक प्रकार का कीट का दृष्टांत दिया जाता है। जो तितली बनना चाहता है, वह इसी जीवन में तितली बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते हैं, तो अनुचिंतन, पार्थानुचिंतन मन, अनुचिंतन मतलब निरंतर चिंतन करना। तो निरंतर निरंतर चिंतन करने से क्या हो जाता है, तितली, वो कैटरपिलर को क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू से, लावा, वो हिंदी है शब्द, वो लावा क्या हो जाता है, तो तितली बन जाता है। वो तितली के ऊपर स्मरण करता है, वो स्मरण करके 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 वो तितली बन जाता है। इसी जीवन में ऐसे होता है ना, ये उदाहरण बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो हम सब लोगों ने इसको देखा नहीं है, और कैसे समझेंगे उसको शहर में रहेंगे तो ये सब समझेंगे नहीं तितली कैसे, लावा तितली कैसे बनता है। कोई पढ़े है क्या, कोई स्कूल में वगैरह इसके बारे में, जब हम लोग थे वो पढ़ा होना है। तो अभी बहुत बदल गया है स्कूल का सिलेबस, एक वक्त बता रहे थे जब वो पढ़ रहे थे स्कूल में, अभी तो पूरा वेस्टर्नाइज हो गया अभी। तो ऐसे स्थिति है ना? तो अनुचिंतन। और दूसरा शब्द यहां पर परमम पुरुषम, वो भी महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद यहां पर वर्णन कर रहे कि हम लोग इसको पढ़ेंगे। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने महत्ता पर बल दे रहे हैं। तो महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो आती है। भगवान के शब्दोच्चार के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य को खान जीव तथा मन व्यस्त रहते हैं। इस ज्ञान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इसे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषम का अर्थ भोक्ता है। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्थ शक्ति है, किंतु वे भौतिक कलमश से युक्त है, वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं, जबकि वे होते नहीं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूपों तथा नारायण वासुदेव आदि स्वांशों के रूप में परम भोक्ता है, परमम पुरुषम। वो शब्द का अर्थ है, समझ में आ रहा है। तो अनुचिंतायन करना चाहिए, निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वो भगवत धाम को जाता है। योग अंतकरण में परमात्मा का ध्यान है। इसी प्रकार हरे कृष्ण के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर के में स्थिर करता है। मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। प्राय उस प्रकार कीट हाँ वो हो गया। और अगले खातर में भी बता दी या अनुचिंतन के बारे में वर्णन करते हैं। तो परमं पुरुषम वो भगवान के ऊपर चिंतन करना चाहिए हम लोगों को। परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थम चिंतयन। तो वो कहते हैं सबसे प्रमुख बात यह है कि वो निरंतर या निराकार या शून्य नहीं है, वो परम पुरुष है, दिव्य है वो, है ना। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है, यह अत्यंत कठिन है। किंतु कृष्ण की चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यहाँ वर्णित है। पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष है। ये पुरुष है कहां पर वर्णन हुआ, पिछले श्लोक में वर्णन हुआ, मतलब अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान पुरुष है, हम राम तथा कृष्ण के पुरुष रूप में सोचते हैं। चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का, वे जिस तरह के है उसका वर्णन भगवद गीता के इस श्लोक में किया गया है। वो कैसे पुरुष है वो इस अठवे नवे श्लोक में वर्णन, लेकिन वो पुरुष है और उनके ऊपर पुरुष के ऊपर ध्यान करना चाहिए वो आठवें श्लोक में वर्णन हुआ है। समझ में आ गया। कोई ऐसे निराकार और निर्विशेष शून्य का कैसे ऊपर चिंतन करेंगे, और ये भगवद गीता के श्लोकों को कैसे अलग अर्थ देंगे, गलत अर्थ दे सकते हैं पुरुष, है ना। तो ये सब निराकारवाद और शून्यवाद सब बकवास है। बस कवि पुराणं अनुशासितारं अनोरणीयां अमनुस्मरेद्य सर्वस्य दातारं अचिंत्य रूपं आदित्यवर्णं तमसत्परस्तात्। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक का पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में खड़े वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तो पुरुष परमं पुरुष के ऊपर ध्यान करना चाहिए ऐसे अनुचिंतयन निरंतर ध्यान करना चाहिए ऐसे पिछले श्लोक में बताया गया। वो कैसे है परमं पुरुष वो इस श्लोक में बताया गया। इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है, ऐसे कहते हैं। तो पहला चीज क्या है, कवि, वो कवि के रूप में उनको स्मरण करना चाहिए। वो सर्व सब कुछ जानने वाला है, भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाला है। कहां पर वर्णन हुआ ऐसे पिछले अध्याय में, वेदां समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेदन कश्चन। सो मैं भूत वर्तमान और भविष्य को जानता हूं लेकिन मुझे कोई नहीं जानते है, ऐसे कहते हैं भगवान। ये कवि का अर्थ है। पुराणम वो प्राचीनतम है, पुरातन है, क्यों है, वही सृष्टि करता है, सब कुछ उनसे निकलता है, वही सबका स्रोत है, इसलिए वो पुराणम है। लेकिन पुराणम इसका अर्थ नहीं है कि जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, वो कुछ ऐसे धर्म वाले होते हैं वो लोग पुराण भगवान सृष्टि करता है इसलिए सृष्टि के आरंभ से है वो, इसलिए अभी बुरे हो गए वो लोग ऐसे सोचते, और उनको ऐसे दाढ़ी से बनाना सफेद दाढ़ी से वो क्या है वो बादल के ऊपर बैठे हुए उनके भद्दाड़ी से आपने देखा होगा ना,
ईसा मसीह का चित्र होता है, ऊपर एक बादल होता है, उसके ऊपर एक चित्र होता है, वो एक व्यक्ति का, वही उनका भगवान है। लेकिन पुराण है, लेकिन फिर भी वो नवयौवनम, आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च, इज अ यंग लैड ऑफ 16 इयर्स, 16 साल के एक नव युवक है भगवान, फिर भी वो पुराण है। तो हाँ, ऐसे कोई भगवान का धारणा, भगवान के बारे में ऐसे कोई वर्णन कहीं मिलेगा आपको कोई भी दुनिया में, है ना? आद्यम पुराण कवि पुराणम अनुशासितारम, वो नियंता है, तो वो सब कुछ नियंत्रण करते हैं, सबको पालन करते हैं, तो उनके नियंत्रण में सब कुछ होता है। तो हम सब लोग नियंत्रित है, हम लोग नियंत्रक नहीं है, हो सकते हैं छोटे छोटे नियंत्रण, लेकिन हम लोग नियंत्रित भी रहते हैं, हम नियंत्रित हो सकते हैं छोटे, नियंत्रक हो सकते हैं छोटे छोटे, लेकिन फिर भी नियंत्रित है। तो प्रभुपाद जी कहा करते, मैं मेरे गुरु के द्वारा नियंत्रित हूं, अनुशासित हूं, मेरे गुरु उनके द्वारा नियंत्रित है, लेकिन एक व्यक्ति है वो किसी से भी नियंत्रित नहीं है, लेकिन सबको नियंत्रित करते, वही कृष्ण है वो। तो ये अनुशासित आर। सो अनु की तुलना में तो वो बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म है। आत्मा क्या है, आत्मा के सूक्ष्म बारे में वर्णन आता है, कैसे सूक्ष्म है वो। हम लोगों ने बालाग्रह शतभाग से शुदुगा कल्पित से हम लोगों ने चर्चा किया, बाल के अग्रभाग को 100 भाग करके, उस एक भाग में 100 के एक भाग में फिर से 100 भाग करेंगे, वो आत्मा का साइज है, लेकिन उसका अर्थ है सूक्ष्म है वो, इतना सूक्ष्म है। लेकिन भगवान इतना सूक्ष्म है कि वो आत्मा में प्रवेश कर सकते हो। प्रभुपाद जी ऐसे बोल रहे हैं इस तात्पर्य में, वो आत्मा में प्रवेश कर सकते हो। ये अनुशब्द का अर्थ है, ऐसे होता है कि आत्मा में प्रवेश कर सकते है। लेकिन भगवान कर सकते है, वो अनु है, वो अनु की तुलना में अनुयाम लघुतर, तो ऐसे उनको सदैव सचेतक अनुस्मरित, यह सर्वस्व दातारम, सबके पालन करता है वो। ये भी हम लोगों ने चर्चा किया कि नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, सबका वो इच्छाओं को वही पूर्ति कर रहे, तो इसलिए वो सबके पालक है वो, सर्वस्व दातारम। सो अचिंत्य रूपम, उनका रूप क्या है, अचिंत्य है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर प्रॉपर्टी भी ज्यादा दौड़ है। तो अचिंत्य रूप या उनके पास अचिंत्य शक्तियां है, तो भगवान का पहला कदम है भगवान को जानने का, कि उनको जानना चाहे, हमें जानना चाहे कि वो अचिंत्य रूप वाले हैं या अचिंत्य शक्ति वाले हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, जैसे सूरज है कि किरण नहीं है तो सूरज कैसे होंगे, वैसे ही भगवान के शक्तियां नहीं है तो कैसे भगवान होंगे, शक्ति होंगे वो, भगवान होंगे वो शक्तियां, लेकिन सिर्फ उनका शक्तियां ही नहीं है, उनके अचिंत्य शक्तियां हैं, इनकंसीवेबल पोटेंसी, वो हमें स्मरण याद रहना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद ये एक्चुअली जीव गोस्वामी बताते हैं ऐसे, उसको यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे कि भगवान को साक्षात्कार या समझने में पहला कदम यह है कि हमें जानना चाहिए कि उनके अंदर अचिंत्य शक्तियां हैं। तो वो या उनका रूप अचिंत्य शक्तियों से बना है, तो वो नहीं है तो क्या हो जाएगा, भगवान को हम लोग एक सामान्य व्यक्ति समझ जाएंगे, हम हमारे जैसे एक व्यक्ति है, जनरल सामान्यतः लोग ऐसे ही समझते, तो और उनकी लीलाएं क्या हो जाएंगे, और रात को सोते समय वो बच्चों को सुनाने वाले लोली, क्या बोलते हैं उसको, लोली लोली लोली, वो गुजराती में बोल रहे हो। सो ऐसे लोली हो जाएंगे, सात साल के बालक बाएं हाथ के छोटी उंगली पर ऐसे पर्वत उठाया था, ऐसा कोई व्यक्ति कर सकता है क्या? ये सब ऐसे बात बताइए बच्चों को सुलाने के लिए है ना। लेकिन हमें समझ में आ जाता, हमें समझ में आता है कि भगवान क्या है, भगवान के अंदर अचिंत्य शक्तियां है, तो क्या हो जाता है, तो वो समझना आसान हो जाता है। वो क्या, बड़े बड़े ग्रहों को भी वो उठा सकते हैं, वो है ना, बड़े बड़े ग्रहों को भी क्या किया है उन्होंने, ये आकाश में स्थित किया है उनको, अपने शक्ति से उनको संभाल रहे हैं वो। ये छोटा एक पर्वत को उठाना उनको क्या होगा, तो ऐसे आसान हो जाएगा हम लोगों को समझना। तो इसलिए एक पहला कदम है, परम शक्ति के बारे में आपको जानना चाहिए। तो परम शक्ति का पहला परिभाषा यह है कि उनके पास अचिंत्य शक्तियां हैं, या भगवान कृष्ण परम सत्य इसीलिए क्योंकि उनके अंदर अचिंत्य शक्तियां हैं। तो श्री प्रभुपाद जी वो कथा बताया करते थे ना, तो एक बार नारद मुनि जा रहे थे, तो पहले वो ब्राह्मण के पास आए, तो ब्राह्मण ने नारद मुनि को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए और उनसे मिले और उनको बताया कहाँ जा रहे हैं, पूछा उनको कहाँ जा रहे हैं, मैं नारायण वैकुंठ जा रहा हूँ। ओ वैकुंठ जा रहे हैं, बहुत अच्छे बात, वहां पर आप भगवान से पूछिए कि हमारा कैसे कब मुक्ति होगा, तो जरूर मैं पूछूंगा, ऐसे नारद मुनि उनको कह के आगे चल पड़े। तो आगे एक मूची के पास आते हैं, वो जो त्वचा से काम करते रहते हैं ना, वो लोग चर्म चमड़े से कार्य करते रहते, चमार है ना, चमार के पास आए वो। फिर नारद मुनि को देखकर वो भी प्रसन्न हो गए, उनको वो बुलाए, सेवा किया उन्होंने और बातचीत किए। उसके बाद नारद मुनि को पूछा आप कहाँ जा रहे हैं अभी, मैं वैकुंठ जा रहा हूँ। वैकुंठ जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, भगवान को वो पूछिए कि हमारा कब मोक्ष होगा, ऐसे वही उन्होंने भी वही प्रश्न पूछे। सो नारद मुनि ने बताया जरूर। फिर नारद मुनि वैकुंठ में गए, फिर पूरा उनके प्रचार का संदेश दिया उन्होंने उनको और उसके बाद उन्होंने इन दोनों के बारे में पूछा, तो फिर भगवान ने बताया उनको नारायण कि ये जो ब्राह्मण है उसको बहुत जन्म लगेंगे, लेकिन ये चम्मार है इस जन्म के अंत में क्या हो जाएगा, मेरे धाम वापिस आ जाएगा, ऐसे बोलते। तो नारद मुनि को तो आश्चर्य हो गया, ऐसे कैसे, क्यों आश्चर्य हो गया, ब्राह्मण ना क्या है, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना होता है उनको। सो ब्रह्म जानाती थी ब्राह्मण, ब्राह्मण को ब्रह्म के बारे में ज्ञान होता है, इसलिए वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रगतिशील होता है। चमार क्या है, वो आहार निद्रा भय मैथुन से ही उसका चिंतन रहता है, तो इसलिए ब्राह्मण पहले मोक्ष मुक्त होना चाहिए। चमार का तो और बहुत सारा लगना चाहिए, वो धीरे धीरे प्रगति करके वो ब्राह्मण शरीर में प्रवेश करेगा, जन्म लेगा, ऐसे है ना। तो इसलिए आश्चर्यचकित हो। फिर भगवान नारायण ने उनको बताया, नारद मुनि को, उनको जाके जब वो आप वापिस जाते हैं उनको मिलने के लिए, उनको बताना कि जब वो पूछते हैं कि मैं क्या कर रहा था, उनको बताना कि वो सूर्य के आंख में मैं हाथी डाल रहा था, ऐसे बता दो, ऐसे बोलते, तब आप समझेंगे कि क्यों ब्राह्मण क्या है, लंबा समय लगेगा उसको और चमार इसी जीवन के अंत में मुक्त हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे बोलते। फिर नारद मुनि ने इसको मान लिया उन्होंने और गए वहां पर, और जब उन ब्राह्मण को मिले तो ब्राह्मण ने पूछा आप गए थे वैकुंठ, हाँ गया था, तो भगवान क्या कर रहे थे वहां पर, तो उन्होंने बोला सुई के आंख में हाथी डाल रहे थे, ऐसे बोलते। तो फिर ब्राह्मण ने क्या कहा, उसका रिप्लाई रेस्पॉन्स क्या था उसके लिए, वो हंसने लगा, वो ऐसे कैसे हो सकता है, सुई के आंख में हाथी कैसे जा सकता है, ऐसे वो वो आश्चर्यचकित हो गया। फिर नारद मुनि जी को समझ में आ गया, तो फिर वो वहां से आगे निकल पड़े। तो उसको बता के तुमको थोड़ा समय लगेगा करके तो फिर आगे चले चमार के पास। फिर चमार के पास जाने के बाद ना वो उसने वैसे ही किया, वैसे ही पूछा उन्होंने, आप वैकुंठ गए थे? हाँ वैकुंठ गया था। तो भगवान क्या कर रहे थे? भगवान सुई के आंख में हाथी डाल रहे थे। तो उसको सुनकर बहुत ही आनंदित हो गए, वाह वो भगवान कैसे है, इतना महान है, वो सुई के आंख में भी हाथी डाल रहे करके। फिर नारद मुनि उनको पूछा उन्होंने, क्यों आप इसके ऊपर विश्वास है आपको? फिर वो चमार ने बताया, क्यों विश्वास नहीं करना चाहिए, क्यों श्रद्धा नहीं करना चाहिए इसके ऊपर? मैं इस पेड़ ये वट वृक्ष के नीचे बैठा हूं, ये वट वृक्ष का जो बीज कितना होता है? इतना होता है, छोटा सा होता है। ऐसे छोटे बीज में भगवान इतना बड़ा वृक्ष को डाल दिया है, होना वो इतने बड़े वृक्ष के रूप में प्रकट हो जाता है। तो क्या वो सुई के आंख में वो हाथी नहीं डाल सकते हैं? ऐसे उन्होंने पूछा। तो उसका श्रद्धा है क्या था? वो ज्ञान के ऊपर आधारित था। श्रद्धा ऐसे अंधश्रद्धा नहीं होना चाहिए, सो ज्ञान के आधार पर था वो। क्या ज्ञान का आधार था? किस वो भगवान के अंदर क्या चीज है जिसके कारण वो सुई के आंख में हाथी डाल सकते हो, या ऐसे बीज में एक इतना बड़ा वृक्ष को डाल सकते हैं जो वृक्ष और भी ऐसे असंख्य बीज को प्रकट करता है, जो बीज फिर से ऐसे वृक्ष के रूप में प्रकट होने की शक्ति रहता है। क्या है भगवान में ऐसी चीज बताइए? सब लोगों ने बता दिया भगवान के अंदर वो अचिंत्य शक्ति है, इसके कारण वो ये कर सकते हैं। तो ये पहले हमें समझना चाहिए, भगवान की शक्तियों के बारे में ज्ञान होना चाहिए और कैसे वो अचिंत्य शक्तियों से युक्त है। अगले अध्याय में बता, अचिंत्य योग महेश्वरम, हे अर्जुन मेरे अचिंत्य ऐश्वर्यों के बारे में और शक्ति के बारे में, योग मतलब शक्ति, सो शक्ति के बारे में सुनो, ऐसे बोलते भगवद गीता में तो पूरा उनके शक्तियों के बारे में और ऐश्वर्यों के बारे में वर्णन आता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद पहले भागवत पढ़ने से, उनकी लीलाओं को समझने से पहले पहले भगवद गीता पढ़ो, तब हम लोग भगवान के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे, उनके शक्तियों के बारे में, उनके स्थिति के बारे में अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे, तब जाके हम लोग उनकी लीलाओं को समझ सकते हैं। ये पहला कदम है परम सत्य को जानने का, भगवान कृष्ण को जानने के लिए, कि भगवान परम सत्य क्या है? अचिंत्य शक्तियों से युक्त है भगवान कृष्ण, इसलिए परम सत्य क्योंकि वो अचिंत्य शक्तियों से युक्त है वो। और अचिंत्य शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ पर प्रोता जी बता रहे, वो महाभारत से उल्लेख करते हैं, लेकिन वो वैसे बताया नहीं, सिर्फ अनुवाद लिख दिया यहाँ पर। अचिंत्य महाभारत में रहना था, अचिंत्य कलि ये भाव नताम सर्के नियोजयत, सो प्रकृति परम यश तद अचिंत्य लक्षणम, ऐसे कहते हैं। तो अचिंत्य शब्द का क्या अर्थ होता है? कि नताम सर्के नियोजयत, तर्क से उसको नहीं जाना जा सकता है, तर्क और वाद विवाद से उसको नहीं जाना जा सकता है। क्यों? क्योंकि अचिंत्य का स्वभाव ऐसे होता है कि वह प्रकृति के परे है, वो प्रकृति परम यश अति तद अचिंत्य लक्षणम, ऐसे बता। हमारे तर्क, हमारे मन बुद्धि और वाद विवाद करने क्या है, वो भौतिक है, वो हमारे मन बुद्धि तो भौतिक है, हमारे तर्क भी भौतिक है, उसके द्वारा हम लोग अचिंत्य को समझ नहीं सकते, क्योंकि वह भौतिक नहीं है, वो प्रकृति के परे है, वो प्रकृति परम यश तद अचिंत्य लक्षणम, ऐसे कहा गया। ये अचिंत्य का अर्थ होता है, इसलिए भगवान का एक नाम भी है अधोक्षजा। अधोक्षजा मतलब जो इंद्रियों के परे है, इंद्रिय अनुभव गम्य के परे है वो। तो वो ये अचिंत्य का अर्थ होता है, तो हमें ये जानना चाहिए। तो यहाँ पर उसके ऊपर और प्रभुपाद जी कहते हैं, इसके ऊपर कौन तर्क कर सकता है, ऐसे कहते हैं। हु कैन आर्ग्यू ऑन दिस पॉइंट, कि भगवान के पास अचिंत्य शक्ति है। यहाँ यह बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों का आकाश गंगाओं का धारण किए हुए है। इस प्रसंग में अचिंत्य शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारे कल्पना या विचार शक्ति से परे है, इसलिए अचिंत्य कहलाते। इस बात का खंडन कौन कर सकता है ना? सो इसका अर्थ क्या है, इस बात का खंडन कौन कर सकता है? इस संसार में ऐसे कई सारे चीज है जहां पर वो अचिंत्य शक्ति के द्वारा क्रियाशील है, वो या व्यक्त है, है ना? उदाहरण तौर पर वो उदाहरण दिया उन्होंने, वो जो कॉबलर ना चमार ने उदाहरण दिया, तो ये अचिंत्य है। क्या आप डाल सकते हैं ऐसा बीज बना सकते हैं जिसके अंदर ऐसे है विशाल वृक्ष बनने के लिए शक्ति है? ऐसा कर सकते हैं क्या? ये जो नाखून है वो क्या मृत है, लेकिन फिर भी बढ़ रहा है वो, ये भी अचिंत्य है ना? ये स्त्री पुरुष का एक रूप होता है, मनुष्य है स्त्री पुरुष, वो दोनों मिलके क्या है और क्या बनाते हैं बोलो? और कई जीवों को सृष्टि करते हैं, जन्म देते हैं। क्या ऐसे कोई मशीन बना सकता है जो दो मशीन मिलकर क्या बनाएंगे और सारे मशीन बना सकते हैं? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना? पेड़ देखिए, हम लोग पानी निकालने के लिए, जमीन से पानी निकालने के लिए क्या क्या करते हैं? उसको खुदाई करते हैं। खुदाई करने के लिए बहुत सारे फैक्ट्री का बहुत सारे उसको यंत्र बनाना पड़ता है फैक्ट्री के कारण। और क्या, वो पंप बनाना पड़ रहा है, पंप अंदर डालना पड़ता है, और विद्युत शक्ति के द्वारा बिजली के द्वारा उसको चलाया जाता है। बिजली बनाने के लिए कितने प्रयास होता है, ये सब करने के बाद पानी अंदर ऊपर आता है। लेकिन पेड़ कैसे पानी ऊपर उठाते हैं बताइए? अपने जो जड़ है उसके द्वारा क्या करते हैं, पानी को ऊपर उठाते हैं। उनके अंदर भी पंप है ना, पानी उठाने का, ऊपर उठाने का पंप है ना उनके अंदर। ये सब अचिंत्य शक्ति है ना। हम लोग उसको यही करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, इतना उग्र कर्म करना पड़ता है हम लोगों को, सिर्फ पानी ऊपर उठाने के लिए। पहले जमाने में वैसे खींच के ऊपर उठाते थे, ये मूर्ख लोग इतना उसके लिए व्यवस्था किया और इसको सुविधा मानते हैं लोग। वो ऊपर उठाने से थोड़ा शरीर तो सदृढ़ दुष्ट पुष्ट हो जाता, सदृढ़ हो जाता था कितना है ना, या बैल से भी निकाल देते, ऐसे सुगम 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 तरीके से उसको किए जाते। तो ये अचिंत्य शक्ति है। ये संसार में, ये संसार अचिंत्य शक्ति के द्वारा चल रहा है, इसको कोई खंडन नहीं कर सकते। कोई खंडन कर सकते है क्या इसको? कोई ऐसा विज्ञान है इसको खंडन कर सकते है? कोई नहीं कर सकते। तो ये पहला कदम है। ये भगवान के अस्तित्व को भी सिद्ध करता है, और ये भगवान का परिभाषा भी है, ये परम सत्य का परिभाषा भी है। वो अचिंत्य शक्तियों से युक्त है करके, तो हमें ऐसे उनको समझना चाहिए, ठीक है? तो ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं अचिंत्य शक्ति के लिए। वे इस भौतिक जगत के में व्याप्त है फिर भी इससे परे है, वो शक्ति उनके द्वारा पूरा व्याप्त है फिर भी वो परे है, ये अचिंत्य भेदाभेद। तो हम इसी भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते जो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है, तो फिर हम कैसे जान सकते इसके परे क्या है? अचिंत्य का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे, जिसे हमारा तर्क नीति शास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू नहीं पाता है, और जो अकल्पनीय है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि व्यर्थ व्यर्थ के तर्क तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों भगवद्गीता तथा भगवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर ले और उनके द्वारा अनुशासित किए गए नियमों को पालन करे, इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा, इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। ऐसा नहीं कि यह अंधश्रद्धा होगा, वो चमार को अंधश्रद्धा नहीं था, उसके उसके अंदर ज्ञान था वो, क्योंकि उन्होंने उनको भगवान के अचिंत्य शक्ति के बारे में ज्ञान था। तो भगवद गीता से हमें ये अचिंत्य शक्ति का ज्ञान होता है। तो ऐसे हम लोगों को आदित्य लवनम तमसा परस्तात, उसके बाद सूर्य के समान प्रकाशमान है। वास्तव में 11वें अध्याय में वर्णन है करोड़ों सूर्य के समान उनका प्रकाश था भगवान का, ऐसे वर्णन आता है। तमसत परस्तात, अंधकार से दिव्य है, परे है, ये भौतिक जगत अंधकार में है, ये तमस कहते हैं इसको, कृत्रिम रूप से इसको प्रकाशित किया जाता है। हम लोग ऐसे लगाते हैं, भगवान ने एक सूरज लगा दिया तो ऐसे उसको प्रकाशित किया, लेकिन वास्तविक रूप से इस भौतिक जगत का स्वभाव क्या है, तमस अंधकार, तमसत परस्तात, भगवान इस अंधकार जगत से परे है वो। तो हम लोग अंधकार में कैसे उनको जान सकते हैं, है ना? तो इसलिए गीता भागवत से हमें उनको समझना चाहिए। प्रयाण काले मनसा चले न भक्त्या युक्तो योग बले न चैव ब्रुवोर मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतम परम पुरुषम उदयति दिव्यम। मृत्यु के समय जो लोग, जो व्यक्ति अपने प्राण को देहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचल मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से ही निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तो प्रयाण काले मनसा चलेना ब्रोर मध्य योग बले न चेव, यहां पर योग मिश्र भक्ति को वर्णन कर रहे हैं। प्राण प्राण सम्यक सतम पुरुषम उपैति दिव्यम। इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके लिए संस्तुति की गई है कि प्राण को ब्रह्म के बीच में आज्ञा चक्र में ले आए। यहाँ पर षट चक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है, जिसे जिसमें छह चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है। तो यहाँ पर भी एक क्या है, चक्र होता है मृत्यु के समय, यहाँ पर उसके ऊपर ध्यान लगाना चाहिए धीरे 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 ऐसे, उसका वर्णन आता है पतंजलि योग सिस्टम। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पर बोल रहे हैं हम लोग शुद्ध भक्ति करते हैं, भक्ति भक्ति योग करते हैं हम लोग, ये इसको हम लोग नहीं करते ऐसे बताते हैं। और लेकिन यहाँ पर योग बले न शब्द आता है ना, प्राण प्रयाण काल मनसा भक्त्या युक्त योग बले न चैव। हम सुबह कह रहे थे ना योग बल, जब तक योग बल नहीं रहता है तब तक भगवान को प्राप्त ना हम आत्म नायम आत्म बलहीन न लभ्यते। आध्यात्मिक शक्ति या योग शक्ति के बिना भगवान को हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रभुपाद जी उसको उस श्लोक को उल्लेख किया करते थे उपनिषदों से, और उस श्लोक में जो बल बताया गया है वो बलराम जी से आता है, ऐसे बल कहते थे, बलराम जी को वो इंगित करता है, क्योंकि बलराम जी क्या करते हैं, आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते हैं हम लोगों को, भगवान हमें आकर्षित करते हैं, इसलिए वो कृष्ण है, वो सर्वाकर्षक है। लेकिन बलराम जी हमें क्या करते हैं, आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते हैं, उस शक्ति के बिना हम लोग भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए योग बलेन चैव, इस श्लोक में योग बलेन शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के अभ्यास, योग के अभाव में छाए हुए चक्र योग या भक्ति योग मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था को प्राप्त नहीं होता। कोई भी मृत्यु से, मृत्यु के समय परमेश्वर का सहज सहसा स्मरण नहीं कर पाता। ये पिछले श्लोक के लिए अभ्यास योग करना चाहिए। सहसा स्मरण उससे किसी न किसी योग का विशेषता या भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है। अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से अध्यात्म तथा अभ्यास का अभ्यास करना चाहिए। यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति कुछ है क्या? यद्यक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयोरुतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहे न प्रवक्षे। जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति, सो वेद विदो वो वेद का ज्ञाता है। बोलो यहाँ पर इस श्लोक में ज्ञान मिश्र व्यक्ति का वर्णन किया है जो वेदों को अभ्यास करते हैं। और ओंकार का उच्चारण करते हैं, क्योंकि वेदों में सभी मंत्रों में ओंकार पहले आता है। तो विशेष करके ओंकार क्या है? भगवान का निराकार शब्द रूप है। वो शब्द रूप है वो भगवान का। तो पिछले अध्याय में उन्होंने बताया ना, प्रणव शब्द प्रणव सर्व वेदेशु। तो प्रणव सर्व वेदे, सभी वेदों में मैं प्रणव ओम के रूप में निवास करता हूं, ऐसे भगवान के कृत्य ओंकार का उच्चारण करते हैं। और जो संन्यास आश्रम में बड़े बड़े मुनि है वो वीतराग मतलब सन्यासी, उनको वीतराग कहते हैं। सो वीतराग यदि इच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्तो चरन्ति, ब्रह्मचर्य चरन्ति ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो। कौटा जी इस तात्पर्य में ब्रह्मचर्य का महत्व बता रहे हैं। जब तक हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर पाएंगे, है ना? तो ब्रह्मचर्य का विरुद्ध क्या होता है? व्यभिचार। ब्रह्मचारी और व्यभिचारी दोनों तद विरुद्ध है ये। तो व्यभिचारी मतलब वो कभी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर पाएगा। वो हम पिछले पांचवें अध्याय के अंत में बताया ना, वो स्पर्श सुख के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो वहां पर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सेक्स लाइफ और सेल्फ रियलाइजेशन दोनों गो इन टुगेदर, ऐसे वो साथ में नहीं जाते हैं। वो एक दूसरे के विरुद्ध जाते हैं वो। तो इसलिए व्यभिचारी और ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी बहुत ही महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक जीवन को प्रगति करने के लिए। तो क्योंकि व्यभिचार में लगना है तो लगते हैं तो, या स्त्री पुरुष के बीच में मिलन जुलन ज्यादा होता है तो क्या हो जाता है? एक व्यक्ति देहात्म बुद्धि में आ जाता है। तो देहात्म बुद्धि में आता है तो वो कैसे जीवन आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उसको प्रेरणा मिलता है? नहीं मिलता है ना। सो पहला आध्यात्मिक जीवन का पहला कदम है फर्स्ट स्टेप इन सेल्फ रियलाइजेशन आर ABCD। तो ABCD क्या है आध्यात्मिक जीवन का? कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इसलिए पहले ही है उसके बारे में बताते हैं ना भगवान। वो अपना उपदेश भगवद गीता में ऐसे आरंभ करते हैं। तो हम लोग देहात्म बुद्धि में चले गए तो वो कैसे आध्यात्मिक जीवन में आ रहा है? ये भी सीधी हम लोग समझा नहीं। तो बाद में हम लोग आगे का कैसे प्रगति करेंगे, है ना? तो सभी इंद्रियों ऐसे है, सभी इंद्रियों के हम क्या करते हैं? देहात्म बुद्धि में। बट विशेष करके जो मैथुन जीवन है वो क्या कर देता है हमें? तो हमें ऐसे देहात्म बुद्धि में लगा देता है। तो और वो श्लोक भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, आहार निद्रा वैमैथुनम च सामान्य में तक पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष हो, धर्म नहीं ना पशु भी समान, धर्म नहीं है तो पशु के समान हो जाते हैं। तो धर्म का अर्थ क्या होता है, तो वर्णाश्रम धर्म। तो वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करने के लिए, तो वर्णाश्रम धर्म से क्या हो जाता है, हमारा आहार निद्रा वय मैथुन है वह नियमित हो जाता है। तो सभी लोग यज्ञ का अन्न स्वीकार करेंगे और तो सही पर समय पर सोएंगे, सही पर समय पर उठेंगे, तो नियमित मैथुन जीवन बिताएंगे। तो ऐसे मनुष्य स्तर पर लेकर आता है वो व्यक्ति को। तो इसका आरंभ कैसे होता है, ब्रह्मचर्य प्रशिक्षण से आरंभ होता है। तो ये आधार है ब्रह्मचर्य प्रशिक्षण क्या है, वो वर्णाश्रम धर्म का आधार है वो, है ना। तो पहले अध्याय में क्या चर्चा होता है, अर्जुन कहते हैं कि बुजुर्गों को मारने से क्या होता है, अगर्म सृष्टि होता है, अगर्म सृष्टि होने से स्त्रियां दूषित हो जाते हैं, स्त्रियां दूषित होने से तो वर्ण संकर का सृष्टि हो जाता है। वर्ण संकर का अर्थ है जो वर्णाश्रम में भाग लेने के लिए योग्य नहीं है। तो अभी दो चीज है जो अधर्म का सृष्टि होता है और स्त्रियां दूषित हो जाते हैं, तो ये दो चीज है। अधर्म का क्यों नष्ट, सॉरी धर्म का नष्ट क्यों हो जाता है, अधर्म क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि कोई प्रशिक्षण ही नहीं मिलता है उनको। तो प्रशिक्षण कैसे मिलता है, तो प्रशिक्षण बुजुर्गों से मिलता है, लेकिन प्रमुख प्रशिक्षण क्या होता है, वो ब्रह्मचारी आश्रम में होता है, गुरु द्वारा वो दीक्षित होने के कारण, दीक्षित होकर ये प्रशिक्षण प्राप्त होता है। तो वो बहुत ही अच्छी तरह से नियमित जीवन में उनको प्रशिक्षण देते, धार्मिक नियमों में प्रशिक्षण देते, ऐसे धर्म का प्रगति होगा, धर्म बढ़ेगा। तो दूसरा क्या है, अच्छा संतान चाहिए उसके लिए, स्त्री भी शुद्ध होना चाहिए, तो स्त्रियों को रक्षा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उनको कॉलेज में भेजना चाहिए, हॉस्टल में भेजना चाहिए, वो स्त्री पुरुष साथ में मिलकर रहना चाहिए विवाह के पहले, उससे क्या हो जाता है, उनके सतीत्व का नष्ट हो जाता है, अशुद्ध हो जाते हैं वो। तो ऐसे चेतना वालों से, ये वैश्या से जन्म लिया हुआ पुत्र क्या है, वो कभी भी वर्णाश्रम में भाग लेने के लिए वो क्या वर्ण संकर है वो। तो प्रमुख चीज क्या है, एक पहला चीज उसके लिए कोई भी स्त्री पुरुष बच्चे जो बालक को ब्रह्मचर्य आश्रम में डालना चाहिए, और स्त्री को माँ के उनके जो साध्वी माँ होती है आशा करते हैं हम लोग, उनके उनके प्रशिक्षण में क्या होना चाहिए, उनको प्रशिक्षण होना चाहिए, तो घर में ही वो माता पिता के रक्षा में रहना चाहिए वो। तो घर के कार्य वो भी प्रभुपाद जी ने विस्तार से वर्णन किया, स्त्री को क्या क्या करना चाहिए, उनको बर्तन धोना चाहिए, कपड़ा धोना चाहिए, घर को साफ करना चाहिए, और वो जो क्या है रसोई बनाना सीखना चाहिए, और बच्चों को देखभाल करना चाहिए, ये चीज बताते हैं श्रील प्रभुपाद। ऐसे स्त्री का प्रशिक्षण होता है। तो लेकिन बालक को क्या करना चाहिए, ब्रह्मचर्य आश्रम में या गुरुकुल में जाना चाहिए। तो ऐसे आध्यात्मिक जीवन में व्यक्तिगत रूप से प्रगति होता है और समाज का भी प्रगति होता है। तो ऐसे प्रशिक्षण होता है। तो प्रभुपाद ब्रह्मचर्यम चरन्ति, प्रभुपाद यहां पर बता रहे आजकल समाज का व्यवस्था इतना बदल गया है, ब्रह्मचर्य का कोई प्रश्न ही नहीं है। ऐसे कोई एजुकेशन में कोई ब्रह्मचर्य का होता है क्या, पालन होता है क्या? आप स्त्री पुरुष को, हम हाल ही में एक हमारे कुछ भक्त एक वो एक विश्वविद्यालय में प्रचार करने के लिए वो उसके जो चेयरमैन है उनको मिलने के लिए गए। वो दक्षिण भारत में अभी भी थोड़ा कुछ वो लोगों को तो थोड़ा ये जो चेयरमैन है वगैरह उनको तो थोड़ा है, और ये स्त्री पुरुष विश्वविद्यालय मिलने के कारण बहुत सारे उनको भी समस्या होते हैं। लड़का लड़की लोग क्या है वो एक दूसरे मिलके यू नो लव प्रेम करके लव करके वो भाग जाते हैं वो लोग। वो ऐसे बहुत सारे ऐसे केस हुआ है उसमें, वो माता पिता आके ये लोगों को तंग देते हैं, जो चेयरमैन या जो कॉलेज में प्रोफेसर है उनको, वो इतना तंग आ गया, वो इतना तंग आ गया इसके कारण ये यू नो भाग जाना या यू नो ये व्यभिचार करना मैथुन करना, इससे इतना तंग आ गया है। वो आके हमारे भक्तों को कह रहे थे स्वामी जी कुछ तो कीजिए करके, लेकिन ये मूर्ख लोग है, पहले वो ऐसा एजुकेशन शिक्षा प्रणाली बनाया है और उसके ऊपर हम लोगों को वो बोलते हैं कि कुछ कीजिए, हम क्या कर सकते हैं उसके कारण, पहले ये बंद करो, ये व्यवस्था ठीक नहीं है, ये व्यवस्था ठीक नहीं, इस व्यवस्था से कुछ नहीं होने वाला है ना। कैसे ब्रह्मचर्य का पालन होता है, कैसे वो लोग स्त्री पुरुष एक दूसरे वो बोलता है ना बालक में वर्णन बटर एंड फायर, तो एक दूसरे के साथ में लेकर आएंगे तो बटर वो कैसे मेल्ट किए बिना कैसे रहेगा वो, है ना, वो पिघलेगा ही है ना, है कि नहीं। वहां पर उस श्लोक में बताया गया जब ये बटर और फायर का जब उदाहरण दिया जाता है, कितना भी वो सन्यासी सन्यासी के बारे में बताएगा, सबके बारे में बताया गृहस्थ सन्यास सबके बारे में, तो कितना भी वो तपस्या किया हो इसके पहले फिर भी वो स्त्री के संपर्क में आ गया तो तुरंत वो पिघल जाएगा, जैसा क्या है अग्नि के संपर्क में जब वो मक्खन आ जाता है तो वो पिघल जाएगा। इसका अर्थ है कितना भी फ्रीज में लगो उसको मक्खन को फिर भी वो पिघल जाएगा। ऐसे हमें सोचना चाहिए, ब्रह्मचारी को ऐसे नहीं सोचना चाहिए, मैं बहुत ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा फिर उसके बाद में मैं माताओं को प्रचार करूंगा। उसका अर्थ है वो माया में है वो। आगे जाके मैं कुछ भी करूंगा, किसी को भी प्रचार कर सकता हूँ ऐसे नहीं, फिर भी जागृत कभी प्रचार, वो जब हम लोग प्रचार समाज में रहते हैं ऐसे प्रचार करते हैं तो कभी मुश्किल हो जाता है, करना ही पड़ता है, विशेष करके जो प्रमुख होते हैं अभी हमारे गुरुदास प्रभु है उनको तो प्रचार करना ही पड़ेगा क्योंकि सभी लोग उनके ओर देखेंगे, है ना, या गुरु होते हैं आध्यात्मिक गुरु या ऐसा, तो वो मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ बंधन होना चाहिए, कुछ लिमिटेशन होना चाहिए सबके लिए, है ना। तो या कहने का मतलब है कि ये जो सिस्टम व्यवस्था जो है वो गलत है, जो को एजुकेशन जो बोलते हैं स्टूपिडिटी, पूरा एजुकेशन ही स्टूपिड है, नॉनसेंस बकवास है वो पूरा, और उसके साथ साथ ऐसे को एजुकेशन बना रहा है, तो ये सब किसके लिए बना रहे हैं लोग, क्यों को एजुकेशन क्यों स्त्रियों को भी बाहर लेके आते हैं उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे है उग्र कर्म के आधार पर जो ये जो समाज बना है या ऐसे कारखानों का जो समाज बना है उसको चलाने के लिए बहुत सारे वर्कफोर्स चाहिए उसको। और वो लोग ऐसे चीजों को बनाते जा रहे अलग अलग प्रोडक्ट बनाना, उसको डिजाइन चेंज करके क्या करना आकर्षक बनाना, जो जरूरी नहीं है उसके लिए बहुत सारे क्या करना पड़ रहा है कर्मचारियों का क्या जरूरत होता है। और वो लोग ये स्त्री मुक्ति हम आपको मुक्ति दे रहे हैं समानता दे रहे हैं ऐसे बोल के ह्यूमैनिटेरियनिज्म, ऐसे हमको मानव अधिकार जो है आपके लिए, आप भी मानव है आपको भी अधिकार दे रहे हैं ऐसे करके उनको बाहर लेके आके क्या किया जाता है तो पढ़ाई करके उनको काम में लगाना जाता है, कर्म करो वर्क 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 ऐसे। तो ये शिक्षण प्रणाली इसके लिए तो ये बहुत ही प्रभा जी बोलते हैं दुनिया का अभी क्या बोलता है प्रभा जी, क्योंकि पूरा दुनिया में प्रवास करके वो देख रहे थे कि क्या कर रहे हैं यहाँ पर दुनिया में क्या क्या चल रहा है। तो विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ में ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव ही नहीं है। आधुनिक समाज में वो आप देखिए कॉलेज के पास वगैरह एक लड़का रहता है, तीन चार स्त्री रहते हैं और उसको ऐसे मारते रहते हैं, हाथ मिलाते रहते हैं, वो आलिंगन भी करेंगे, चुंबन भी करेंगे अभी, है ना, ऐसा चलता रहता है। या बहुत सारे लड़का रहते हैं, एक लड़की रहते हैं, ऐसे वो ऐसे वो फ्लर्टिंग बोलते हैं उसको, है ना, दे आर ऑलवेज बिजी इन फ्लर्टिंग। तो ऐसे कार्य में लगे रहते हैं लोग, तो वो कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करेगा? वो एक नंबर का व्यभिचारी है, कामाचारी है या व्यभिचारी है ना। तो ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसे मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांत में शिक्षा प्रदान की जा सके। तो वो एक ही संस्था, प्रभुपाद जी ने वो क्या किया, उसको बढ़ावा दिया उन्होंने। तो प्रभुपाद जी का एक महत्वपूर्ण समाज के लिए योगदान क्या है, ये ब्रह्मचर्य को सिखाया उन्होंने, है ना, पाश्चात्य देश में भी उन्होंने सिखाया उन्होंने ब्रह्मचर्य, और गुरुकुल बनाना चाहते थे श्रील प्रभुपाद, इसलिए गुरुकुल चाहिए आरंभ से, कैसे ब्रह्मचर्य का पालना। हम अभी क्या है, अभी जो ब्रह्मचर्य आश्रम हम लोग इस्कॉन में बना रहे हैं, वो अडल्ट रिफॉर्म प्रोग्राम है, वो समझ आते अडल्ट रिफॉर्म, सब बिगड़े हुए लोगों को ले तो है ना, तो ऐसा स्थिति है, इसलिए गुरुकुल का जरूरत है आरंभ से ब्रह्मचर्य का प्रशिक्षण देने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद का एक योगदान है ये दुनिया के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, ये बहुत अच्छा है। आपको जो लोग बहुत लंबे समय से ब्रह्मचर्य जीवन में ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे, उनका अनुभव होगा ये कितना महत्वपूर्ण जीवन है ये, ना हम सब लोगों को अनुभव है कि हम लोग कितना शास्त्र अध्ययन कर पाए, कितने सारे प्रचार कर पाए, कितने लोगों को भक्त बना पाए, कितना महत्वपूर्ण है ये जीवन, है ना, कितना आनंद है इसमें, विशेष करके कृष्ण भावनामृत में जो ब्रह्मचर्य है, है ना, ऐसा जीवन कहाँ मिलता है। लोग और बाहर के लोगों को भी पता है, ये जो स्त्री है ये स्त्री का समानता है, उनको रिजर्वेशन देना, उनको समानता देना, ये सब बकवास है करके उनको भी पता है। वो अभी एक व्यक्ति से, एक भक्त से बात कर रहा था, वो डिफेंस में है, वो यू नो डिफेंस में, वो कह रहा था डिफेंस में भी ऐसे नियम है, उनको भी सम्मान देना चाहिए, उनको भी कुछ रिजर्वेशन होता है, उतने सारे क्या है सैनिकियों को वो कुछ नहीं कर पाते हैं, सिर्फ बोझा है वो, यू नो वो डिफेंस भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक भारत में एक ऑर्गेनाइजेशन है, सभी देशों में ऐसा ही है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ बोझा है ये स्त्रियां। वो क्या कर रक्षा कर पाएंगे बताओ, है ना, सब मूर्खता है ये सब। वहां पर लड़ने के समय उसको एक नंबर क्या कहेगा कितना मूर्ख लोग बाबा सच्चा जो सच्चा लुडिक्रस थिंग है। तो वो लोग भी जानते हैं, तो इसलिए हम लोगों को जो अवसर प्राप्त हुआ है वो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए, ब्रह्मचर्य जीवन का, विशेष करके सत्वगुण होना चाहिए ब्रह्मचर्य के लिए। ब्रह्मचर्य आश्रम में टिकना मतलब सत्वगुण का बहुत जरूरत है, रजोगुण में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता है। तो रजोगुण में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता है, तो अपने आप को सत्वगुण में रखना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। तो ऐसे ब्रह्मचर्यम चरंती, तो ब्रह्मचर्य का पालन होता है, तो वो लोग क्या हो जाते हैं, ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, निराकार ब्रह्म में। तो श्लोक क्रमांक 13 12।
सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरभिनिरुद्यच मूर्ध्याध्यात्मना प्राणम् आस्तितो योगधारणम्। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्त विरक्ति को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। तो दसवें श्लोक में वो क्या बताया उन्होंने, षट्चक्र योग का वर्णन किया भगवान ने। लेकिन वो क्या समझे, अर्जुन को पता नहीं होगा इसके बारे में वो कैसे किया जाता है, इसलिए उसको बताना चाहते थे वो, तो इसलिए उसका वर्णन इस श्लोक में करते हैं। इसका पुष्टि श्री प्रभुपाद पिछले तात्पर्य में हो कहते हैं। वो पढ़िए पिछले तात्पर्य को, वो पहले बाप को पढ़िए, तात्पर्य के पहले बाप को।
बताई गई विधि के विधि से योग अभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने होते
हैं।
श्री कृष्णार्जुन के लिए विधि का अनुमोदन कर चुके है, जिससे प्राण को भोगों के मन के स्थिर करना पड़ता है। यह मानकर कि हो सकता है अर्जुन को प्रत्येक योग अभ्यास न होता हो, कृष्ण अगले श्लोकों में इसकी विधि बता देते हैं। भगवान कहते हैं कि तपस्या भी
है। तो अगले श्लोक में श्लोकों के द्वारा वर्णन करते हैं, मतलब ये 12वें श्लोक और 13वें श्लोक में इसके बारे में वर्णन कर रहे हैं, षट्चक्र योग के बारे में। वो क्या कर रहे हैं, सर्व द्वाराणि संयम्य, सभी द्वारों को बंद करना चाहिए। कितने द्वार है हम लोग पहले चर्चा किया ना, नौ द्वारों को बंद कर देना चाहिए उनको। तो मनोरवि निर्देश, इसको बंद करना है, क्या कहते हैं उसको, प्रत्याहार कहते हैं। यमा नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, ये इंद्रियों को इंद्रिय विषयों का जो अन्न है वो नहीं देना, उसको प्रत्याहार कहते हैं। तो ऐसे प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं। सो सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरथि निरुद्यच, मन को हृदय में स्थापित करके, तो मूर्धन्य आधाय आत्मनः प्राणमास्तितो योग धारणम, इंद्रियों को समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु उनको सिर पर केंद्रित करके मनुष्य को अपने को योग में स्थित स्थापित करता है। तो प्राणवायु, तो प्राणवायु को सर के ऊपर केंद्रित करना चाहिए, तो ऐसे भगवान बता रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि इसके बारे में विस्तार से छठे अध्याय में वर्णन हुआ है और अर्जुन ने उसको नकार दिया है, वो अभी व्यवहारिक नहीं है ये सब चीज करना। तो एक और बात है कि जब हम लोग भक्ति में कभी कभी कुछ भक्त करते हैं ना, योगासना वगैरह हेल्थ के लिए है ना, स्वास्थ्य के लिए, लेकिन वो जैसे योग मिश्र भक्ति नहीं है या अष्टांग योग नहीं है, वो सिर्फ जो भक्ति के लिए अनुकूल कारक है उसको स्वीकार कर। जैसे ब्रह्मचर्य भी भक्ति के लिए अनुकूल है, ब्रह्मचर्य क्या है, वो वर्णाश्रम का एक अंग है। तो ज्ञान योगी भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अष्टांग योगी भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, भगवान बोलते हैं ना, और भक्ति योगी भी कर सकते हैं उसको। तब क्या हो जाता है, भक्ति के लिए भक्ति के जो सीधे अंग है उनको पालन करने के लिए एक सुविधाजनक अवसर है, वो एक वातावरण है, है ना। तो भक्ति में आपको चार नियम को पालन करना होता है। आप ब्रह्मचर्य पे प्रशिक्षण ही नहीं लिया तो वो कैसे पालन कर। बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, हम जब कॉलेज के युवकों को प्रचार करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते, कॉलेज के बच्चे होते हैं, वो लोग है चार नियम को पालन करना मुश्किल हो जाए। उनको इच्छा है, हाँ भक्ति करने का इच्छा है, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का वो प्रशिक्षण है तो वो सुविधाजनक हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग ऐसे कुछ एक्सरसाइज किया, हेल्थ अच्छा हो गया, तो वो योग मिश्र भक्ति नहीं है, वो भक्ति का ही अंग हो जाता है, वो गौण अंग हो जाता है उस भक्ति का। सीधा अंग तो नहीं है, सीधा अंग तो हरे कृष्ण महामंत्र जप कर। तो ऐसे अलग अलग योग पद्धति, क्योंकि भक्ति योग सभी योगों के जो कंपोनेंट्स है, हम लोगों ने चर्चा किया ना उसको, तो युक्त रहता है, वो सब रहते हैं, कर सकते हैं वैसे, ठीक है। तो श्लोक क्रमांक 13, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मा व्यवहार व्याहरन् मामनुस्मरन् यप्रयाति तजं देह सयाति परमां गतिम्। इस योग अभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर को त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोक को जाता है। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, ओम शब्द क्या है, वो मेरे से भिन्न नहीं है, या भगवान को ही संबोधित किया करता है वो, लेकिन वो निराकारवादी उसको उच्चारण करते हैं। जो हम लोग भक्त लोग हैं वो सीधा भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं। सो ये कैसे होता है, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण, मुझे ओम को उच्चारण करके जो मुझे स्मरण करता है, इसका अर्थ है ओमकार क्या है, वो भगवान ही है, भगवान कृष्ण ही है, या भगवान का जो शब्द रूप है वो निराकार शब्द रूप है वो, लेकिन वो पूर्ण नहीं है, उसके द्वारा हम लोग भगवान का निराकार जो स्वरूप है उसको ही साक्षात्कार कर सकते हैं। लेकिन हमें भगवान को साक्षात्कार करना होता है, हमें क्या करना चाहिए, हमें हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना चाहिए, और हरे कृष्ण महामंत्र में ओम ओम भी आ जाते हैं, क्योंकि सभी वेद मंत्र हरे कृष्ण मंत्र में है ना। कभी कभी कुछ लोग ये भी पूछते हैं ना कि गायत्री मंत्र क्यों हमें करना चाहिए, ऐसे पूछते हैं वो, या गायत्री मंत्र का हरे कृष्ण महामंत्र से क्या संबंध है। तो एक वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, क्या बोलते हैं उसको, हाँ हिंदी में क्या बोलते हैं हम किसी को पता नहीं। तो वो अंदर सभी जो वेदों के मंत्र क्या है, वो अंदरूनी सर्कल है, वो बाहर का जो सर्कल है वो हरे कृष्ण महामंत्र, इसमें सभी वेद मंत्र आते हैं, अन्य कोई मंत्र को उच्चारण करने का कोई जरूरत नहीं है। तो हरे कृष्ण महामंत्र से ही हम लोग परिपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम लोग क्यों उच्चारण करते हैं, हम लोग इसलिए उच्चारण करते हैं, एक चीज है कि वर्णाश्रम को स्थापित करना पड़ेगा, कुछ तो ब्राह्मण होना चाहिए, ऐसे लोग होना चाहिए जो इसको भी उच्चारण करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को ऐसे आदेश दिया, जो लोग जो नास्तिक लोग हैं और निकम्मे हैं, वो अपने जन्म के गर्व से, जन्म ऊंचा कुल में जन्म लेने के गर्व से वैष्णवों को क्या करेंगे, निंदा करेंगे। तो इसीलिए वर्णाश्रम धर्म का स्थापित करो, ऐसे बोला हूं, ऐसे आदेश। उसका अर्थ क्या होता है, जो तथाकथित ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं वो वैष्णवों को निंदा करते हैं। कैसे निंदा करेंगे, क्योंकि इसने पाप किया था पूर्व जन्म में, इसलिए ऐसे निम्न कुल में जन्म लिया है ये वैष्णव करके। तो इसलिए वैष्णव में भी कोई क्या होना चाहिए, कुछ ब्राह्मण होना चाहिए, कि लोगों को दिखाने के लिए कि कैसे वैष्णव भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हो सकते हैं करके। सिर्फ उनको दिखाने, मूर्खों के लिए दिखाने के लिए, वैसे जरूरत नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र से ही हम लोग परिपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कारण था क्यों, इसलिए कुछ भक्तों को ये मंत्र दिए जाते हैं, यू नो, क्या है वो, यू नो, गायत्री मंत्र दिया जाता है, वैसे जरूरत नहीं है। भक्त बनने के लिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र जप करना बस, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को वो देना जरूरी है, लेकिन वो सब अच्छी तरह से ब्राह्मण के गुण होना चाहिए, ऐसे नियम पालन करना चाहिए। प्रभुपाद जी एक व्यक्ति उस दिन बता रहे थे ना, हम हर एक ब्राह्मण को सन्यास जरूरी है, ऐसे बोलते, ऐसे होना चाहिए। हम लोग पहले ही सोचना चाहिए वो दीक्षा लेने से पहले, है ना। नहीं तो हम लोगों को भी वो लोग फिर से निंदा करेंगे, हम लोग उनको निंदा करते हैं, तुम 25 पैसे के धागे का ब्राह्मण, अपने आप को ब्राह्मण कहते हो, ऐसे हम लोग निंदा करते हैं उनको, वो लोग निंदा करेंगे हम लोगों को, तुम लोग भी ऐसे ही बन गया ऐसे करके, है ना। तो इसलिए जागरूक होना चाहिए हम लोगों को लेने से पहले, ठीक है। भक्त के अंदर गुण होना ही चाहिए ना, वास्तव में देखेंगे तो, नहीं तो उसका कुछ कमी है, ऐसे सोचना चाहिए। लेकिन कभी कभी भक्तों में भी ऐसे हो सकते हैं, वो अलग अलग वर्ण के भक्त हो सकते हैं, है ना। सभी अपने प्रवृत्ति के प्रवृत्ति से भगवान को सेवा कर सकते हैं। और त्यजन देह स याति परमाम गतिम, परम गति को प्राप्त करेंगे। प्रभुपाद भक्त लोग वैकुंठ में प्रवेश करेंगे ऐसे कहते हैं, अन्य लोग हैं वो निर्विशेषवादी ब्रह्म जाति में जाते हैं। योगी कहाँ जाते हैं फिर, निर्विशेष ज्ञानी तो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, वेदों को जानकर ओंकार को उच्चारण करके। योगी कहाँ जाते हैं बताइए, भक्त लोग तो वैकुंठ जाते हैं। योगी का अलग अलग हो सकता है गंतव्य, वो शांत रस को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का भक्त बन जाते हैं, भगवान के भक्तों के संपर्क में आकर, या नहीं तो वो भी निर्विशेषवादी है, तो वो जब परमात्मा को मैं वो परमात्मा हूँ ऐसे उन्होंने देख लिया तो क्या हो जाएगा, वो लोग निराकारवाद बन जाएंगे निर्विशेष। तो ऐसे अलग अलग गंतव्य हो। तो श्लोक क्रमांक 14, अनन्य चेतः सततम् यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभवार्ता नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरे भक्त भक्ति में प्रवृत्त रहता है। यहाँ पर जैसे हम लोगों ने देखा ना, कौनसला श्लोक में तात्पर्य में, या तो श्लोक क्रमांक 10 के तात्पर्य खोले, वहां पर क्या बताते हैं श्लोक प्रभुपाद, यहाँ पर षटचक्र योग का अभ्यास का प्रस्ताव है जिसमें 6 चक्रों का ध्यान लगाया जाता है, परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में की गई है। यहाँ पर किसका, शुद्ध भक्त मतलब शुद्ध भक्ति का यहाँ पर वर्णन हुआ। इसके पहले क्या है, अन्य योग पद्धति का वर्णन हुआ, 7वें श्लोक में कर्म योग का वर्णन हुआ, फिर 10वें श्लोक में षटचक्र योग का वर्णन हुआ, 11वें श्लोक में ज्ञान योग का वर्णन हुआ, और 12वें और 13वें में फिर से भगवान षटचक्र योग का वर्णन करते हैं। और हम लोगों ने देखा ना ये सब क्या है, अलग अलग योग पद्धति, सिर्फ मिश्र भक्ति है, क्योंकि सब कुछ योग क्या है, वो भक्ति है। ऐसे हम लोगों ने पहले चर्चा किया है इसके बारे में। तो इस श्लोक में शुद्ध भक्ति का वर्णन किया, अनन्य चेता कृतम, अनन्य भावना से वो भगवान को स्मरण करता है। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरत नित्यशः, नित्य हमेशा। तो ये शब्द नित्य बार बार आता है ना इसमें, पीछे दो बार आता है, नित्य युक्तस्य योगिनः, कॉन्स्टेंटली हमेशा, ऐसा नहीं कि पार्ट टाइम मेडिटेटर। जो ऐसे जो कहते हैं वो लोग निष्काम, उसको शुद्ध भक्ति कहते हैं या निष्काम भक्ति कहते हैं। इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्तव्य अंतिम गंतव्य का वर्णन, जो भक्ति योग द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोकों में चार प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ, पिछले श्लोकों में मतलब एक्चुअली वो पिछले अध्याय में, सातवें अध्याय में। अर्थ जिज्ञासु अर्थाति तथा ज्ञानी, मुक्ति के विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ ये सातवें श्लोक से लेकर, मुक्ति कैसे होता है, कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग, इन योग पद्धतियों के नियमों में कुछ ना कुछ भक्ति मिली रहती है, इसलिए वो मिश्र भक्ति है। हमने इसलिए कह रहे थे ना, ये ज्ञान कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति या योग मिश्र भक्ति, ऐसे हम कह रहे थे ना जब वर्णन कर रहे थे, इसलिए भक्ति मिली रहती है। लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है, जिसमें ज्ञान कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता है। शुद्ध भक्ति का परिभाषा कहाँ दिया है रूप गोस्वामी ने, अपने भक्ति रसामृत सिंधु में, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनागतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रूपमा। तो उसमें सभी इंद्र पित्त की इच्छाओं को शून्य बनाकर ज्ञान कर्म आदि से, योग आदि से आवृत हुए बिना, उससे ज्यादा प्रभावित हुए बिना, तो अनुकूल भाव से कृष्ण की जो सेवा करते हैं उसको उत्तम भाव भक्ति कहते हैं। हम लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे थे कल भी, जब चार प्रकार के मिश्र भक्तों के बारे में वर्णन कर रहे थे। तो ये सब मिक्स है, यहाँ पर जो तीन प्रकार के योग मिश्र के बारे में वर्णन किया गया, तीन प्रकार के मिश्र भक्तों के, पहले भी चार प्रकार के मिश्र भक्तों के बारे में वर्णन किया, ये सब लोग क्या है, मिश्र भक्त है। इस श्लोक में जो वर्णन हुआ है वो शुद्ध भक्तों का वर्णन हुआ है। तो ज्ञान कर्मादिनावृतम, उससे ज्ञान कर्म और आदि से आवृत नहीं होना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या है, हमें ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि मुझे भक्ति योग करने के लिए योग अभ्यास करना चाहिए, षट चक्र योग का अभ्यास करना चाहिए, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। और सभी वो कैसे किया जाता है, षट चक्र कौन कौन से है और क्या है, वो प्राणवायु को कैसे, सभी इंद्र यू नो द्वारों को कैसे बंद करना चाहिए, वो सब सीख के, या पतंजलि योग सूत्रों को अध्ययन करना, इसमें लगना क्या है, वो मिश्र भक्ति है, योग मिश्र भक्ति है। लेकिन अभी थोड़ा बहुत जो हमारे स्वास्थ्य के लिए योगाभ्यास करते हैं हम लोग, वो योग मिश्र भक्ति नहीं है, वो भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, वो गौण अंग हो जाता है भक्ति का। अंतर समझ में आ गया ना। और ज्ञान मिश्र भक्ति कैसे होता है बताइए, ज्ञान से आवृत भक्ति का क्या अर्थ होता है, जो फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन, विशेष करके शुष्क चिंतन में लग जाते हैं, तर्क वितर्क में, शुष्क तर्क वितर्क में लग जाते हैं, और लेकिन शास्त्र युक्ति क्या है, वो एक्सेप्टेबल है, वो स्वीकृत है। लेकिन शुष्क मानसिक चिंतन में जो लग जाता है अपने मनोधर्मों में, उसको ज्ञान मिश्र भक्ति कहते हैं। और अंत में निराकार ब्रह्म का वो अल्टीमेट कंक्लूजन में आता है, वो उसको ज्ञान मिश्र भक्ति कहते हैं या ज्ञान योग कहते हैं उसको। लेकिन हम लोग जो शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, हम लोग भक्ति के सिद्धांत को जानने के लिए तर्क करते हैं या चर्चा करते हैं या वाद विवाद करते हैं, वो ज्ञान योग नहीं है। वो भक्ति शुद्ध भक्ति है। वैसे ही वर्णाश्रम, जैसे स्मार्ट लोग वगैरह वर्णाश्रम का पालन करते हैं, वो बहुत सारे कठोर नियमों वर्णाश्रम के नियमों को पालन करते हैं वो लोग, लेकिन वो भगवान का भक्त नहीं होते। या कर्मकांडी लोग, जैमिनी के अनुयायी, वो लोग वर्णाश्रम को बहुत कड़ाई से पालन करते हैं वो लोग। जो संन्यास ले गए उनको बहुत निंदा करते हैं वो लोग, ये संन्यास लोग वर्णाश्रम को त्याग दिया, सभी अपने नियत कर्म को त्याग दिया, ये लोग अशुद्ध लोग है, वो पुण्य को त्याग दिया है, उनको मुंह भी देखना नहीं चाहिए बोलते हैं वो। लेकिन सन्यासी क्या होते हैं, वो अशुभ होते हैं। हो सकता है मायावादी सन्यासी है, ऐसे बताया गया। ऐसे लोगों को दर्शन करने से क्या करना चाहिए, समुन्द्र में या नदी में जाके कपड़े के साथ नहा के बाहर आना चाहिए, ऐसे बताया गया। वो श्लोक भी उल्लेख आता है बाद में, 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में। हो सकता है, लेकिन वैष्णव सन्यासी तो ऐसा नहीं होते। तो ये सब चीज क्या है, कर्म मिश्र नहीं है। हम लोग फिर क्यों वर्णाश्रम के बारे में बात, कर्म मतलब क्या है, वर्णाश्रम है ना। तो जो अनुकूल कारक है भक्ति के लिए, हमें शुद्ध भक्ति करने के लिए अनुकूल कारक है, उसको स्वीकार करना चाहिए। तो वो भी जरूरत है, नहीं तो ऐसे समाज में रह के कैसे भक्त लोग शुद्ध भक्ति को कर पाएंगे, है ना। ज्यादा से ज्यादा ऐसे उग्र कर्म या जो असुरी कर्म, जब भी हम उग्र कर्म बोलते हैं, हमें आपको जान लेना चाहिए कि वो असुरी समाज है, क्योंकि वो उग्र कर्म कहाँ आता है, 16वें अध्याय में आता है, क्षया या उग्र कर्मानो। सो जगतो हित ऐसे। और इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद, इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या वर्णन करते हैं, भक्ति कैसे सर्वोच्चम, भक्ति का सर्वोच्चता के बारे में, सुपर एक्सलेंस ऑफ डिवोशनल सर्विस। ये नान्य जो मार्ग भगवान ने बताया, मुक्ति का मार्ग बताया, अभी कर्मयोग ज्ञान योग और अष्टांग योग जो बताया उन्होंने, उससे कैसे शुद्ध भक्ति श्रेष्ठ है, उसको इस तात्पर्य में कहते हैं। तो वो चार पॉइंट बताते हैं कैसे श्रेष्ठ है, वो आप लिख लीजिए, बाद में आप उसमें ढूंढिए। आप पहला चीज शुद्ध भक्ति में कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं हो सकती है, इच्छा नहीं होती है ना। ज्ञान कर्म में, कर्म ज्ञान और अष्टांग योग में व्यक्तिगत इच्छा से मुक्त नहीं हो सकते हैं, वो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी है वो लोग, है ना। भुक्ति कर्मी लोग भुक्ति चाहते हैं, ज्ञानी लोग क्या चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, और योगी लोग सिद्धि चाहते हैं। सिर्फ कृष्ण भक्ति निष्काम, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कोई भक्ति में कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता, ऐसे लिखे, या इच्छा नहीं होता। और दूसरा क्या है, भक्ति बहुत ही सरल है और आसान है, सिंपल एंड इजी, सरल है और आसान है, ऐसे कहते हैं। और तीसरा चीज है, सबको भगवान सहायता करता है, सभी योगियों को, लेकिन भक्तों के प्रति भगवान का विशेष कृपा होता है। तो इसके लिए यहां पर दो श्लोक उल्लेख कर रहे हैं ना श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में। आप देखिए वहां पर वो कठ उपनिषद से वो यम योगेश गृहते तेन लभ्य तस्यैव आत्मा विवृणते तनम स्वाम, ऐसे कहते हैं। जिसने पूरी तरह भगवान की शरण ले ली है और जो उसकी भक्ति में लगा हुआ है, वही भगवान के यथारूप में समझ सकता है। तो और तथा गीता में, और गीता का भी एक श्लोक उल्लेख करते हैं, ददामि बुद्धि योगंतम ये नमा तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगंतम ये नमा उपयंति ते, ऐसे कहते हैं। और चौथा है, इस भक्ति मार्ग में कोई बाधाएं नहीं होते। तो अन्य मार्ग में बहुत सारे बाधाएं होते हैं, इंपीडिमेंट्स, बहुत ही आसानी से इसको क्या किया जाता है, अभ्यास किया जाता है। इसलिए भगवद्गीता क्या है, भक्ति का संस्तुति करता है। इस कैसे भक्ति योग सर्वोच्च योग पद्धति है या श्रेष्ठतम है, अन्य योग पद्धतियों से श्रेष्ठतम है, इसके बारे में बहुत जगह वर्णन किया गया। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समेत ततस्विद्योगदिको योगी योगिद्यपि मतोदिकः कर्मेभ्योपि तो ऐसे बताया गया है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमन धर्म्याम सुसुकुम कर्तुम अव्ययम, ऐसे कहा गया है। तो बहुत जगह पर तो वर्णन किया गया इसके बारे में। छठे अध्याय में प्रभुपाद जी ने कैसे योग पद्धति से भी भक्ति श्रेष्ठ है उसको वर्णन करते हैं उनके तात्पर्यों में। तो क्यों ये श्रेष्ठतम का, भक्ति का श्रेष्ठतम श्रेष्ठ क्यों है, इसके बारे में क्यों प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बता रहे हैं, बताइए इस श्लोक से क्या संबंध है इसका, क्या संबंध है इसका इस श्लोक से, क्यों ये ऐसे चीजों को बता रहे प्रभुपाद जी। यहाँ पर सुलभ शब्द है ना, तस्याहम सुलभ पार्था नित्य युक्त से योगिना, बहुत ही सुलभ है, इजी टू परफॉर्म, और अन्य भी श्रेष्ठ चीजों को वर्णन करते हैं, है ना। और ऐसे करके क्या हो जाता है, उनको क्या प्राप्त हो जाता है, सामान्यतः भक्ति योगी पांच प्रकार के भक्ति में लगे रहते हैं, वो ऐसे प्रेम को प्राप्त करते हैं इन पांच रसों में। शांत भक्त जो उदासीन रहकर भक्ति के भक्ति में युक्त होते हैं, दास भक्त जो दास के रूप में भक्ति में युक्त होते हैं, शाक्य भक्त जो सखा के रूप में भक्ति में युक्त होते हैं, वात्सल्य भक्त जो माता पिता के भांति भक्ति में युक्त होते हैं, तथा माधुर्य भक्त जो परमेश्वर के सदा दाम्पत्य प्रेमी के भांति भक्ति में युक्त होते हैं, शुद्ध भक्त इनमें से किसी में भी परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी नहीं भूल पाता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। तो और बोलते हैं, जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्तों को क्षण भर भी नहीं भूलते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, इस महामंत्र के कीर्तन की कृष्ण भावना भावित विधि का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो अभी हमारा क्या रस है हमारा बताइए। तो इन सभी चीजों में सार क्या है, इन सभी रसों में दास भावना वो सार है, आपने जो बताया वैसे चैतन्य चरितामृत में इसका बहुत विस्तार करते हैं। हर एक रस में जो भक्त है वो कैसे दास भावना को व्यक्त करते हैं, उसके लिए उन्होंने अलग अलग जगह से उदाहरण दिया उन्होंने चैतन्य चरितामृत में, आदि लीला के छठे अध्याय में, जहां पर अद्वैत आचार्य का वर्णन आता है। अद्वैत आचार्य अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का दास मानते थे, हालांकि वो गुरु उनके गुरु गुरु के गुरु भाई थे, वो ईश्वरपुर के गुरु भाई थे वो, और वयोवृद्ध थे। ये दोनों होने के बावजूद भी हालांकि चैतन्य महाप्रभु उनको गुरु के समान देखते थे वो, फिर भी अपने आप को वो क्या सोचते थे, महाप्रभु के दास मानते थे, क्योंकि सभी लोग भगवान का दास। उस दास भावना को वर्णन करने के लिए बहुत ही अलग अलग जगह से वो विश्लेषण, कैसे नारद कैसे शांत रस में जो भक्त है वो भी अपने आप को भगवान का दास मानते हैं, दास रस में जो भक्त है वो भी अपने अपना भगवान को दास मानते हैं। जैसे हम लोग कल चर्चा किया ना, वो पंच महाभूत में जो शब्द जो है सभी सभी जो है तत्व में रहता है वो, या सभी तत्व में रहता है। वैसे ये दास भावना सभी रसों में रहता है ना, वो सार है सबका। और अभी हम लोग गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करते हैं, इसलिए गुरु दास है हमारा रस। तो वही हमें क्या कर, अपने आप को क्या सोचना चाहिए, भगवान का माता पिता नहीं समझना, या हमें अपने आप को गोपी नहीं मानना चाहिए। हाँ, कोई एक मूर्खता बोलते हैं, वो पुलिस अफसर कोई यूपी में कहाँ पर, वो अपने आप को राधा मान के वो दफ्तर से वापिस आने के बाद वो साड़ी पहन के वो खड़ा हो जाता था बोलते। हाँ ऐसे मूर्ख। और बंगाल में भी एक अपसंप्रदाय है, चूड़ाधारी चूड़ाधारी, हाँ सखी बेकी और चूड़ा दे रहे दोनों दोनों, सखी बेकी मतलब अपने आप को भगवान का सखी मानते हैं वो लोग। हाँ और ऐसे ही ड्रेस पहनते हैं। हाँ और मूर्ख लोग महीने में तीन चार ऐसे ऐसे वो सब वो मान, ये सब चीज वहाँ नहीं होता है सब चीज। चूड़ाधारी ऐसे चूड़ा डालना, ये सब उपनिषद का सब, हम क्या, हम तो गांव के गोपी है, ये सब हमें उपनिषद पढ़ना भगवद गीता पढ़ना भागवत पढ़ना ये हमारे लिए नहीं है ऐसे मूर्ख लोग। सार क्या है, दास भावना वो सार है। अब मायापुर वृंदावन ऐसे गए, वृंदावन में विशेष करके ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, मायापुर में भी बंगाल में भी बहुत सारे ऐसे मिलेंगे। तो ये सब आपका संप्रदाय है ठीक है। माम अपेक्षत कौन्तेया पुनर्जन्म न विद्यते तस्या नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। माम अपेक्षत पुनर्जन्म, जो क्योंकि मुक्ति का क्या बताया उन्होंने, मार्ग बताया अभी, ऐसे मुक्त होने के बाद इस जगत में, इस जो दुकाल है और अशाश्वत है, ऐसे जगत में फिर से जन्म नहीं लेते हैं वो लोग। ये भौतिक जगत क्या है, वो दुखालय है, दुख का आलय है वो। जैसे हिमालय, हिमालय में हिम है, ग्रंथालय में ग्रंथ पाएंगे, दुखालय में दुख पाएंगे, और कुछ नहीं है इसमें। कुछ लोग इसको सुन के समझते हैं, कुछ लोग अनुभव करके समझते हैं, लेकिन अनुभव करके समझने वाले कम बुद्धिमान, उनको अनुभव का क्या मौल्य देना पड़ता है ना। दुकाल है मशाश्वतम, और जब भी हमें ऐसे कुछ दुख आ जाता है हमारे शरीर में, ऐसे ऐसे कोई रोग आ जाता है या कैसे हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, हमें समझना चाहिए कि भगवान हमें ये साक्षात्कार प्रदान कर रहे कृपा करके, है ना, नहीं तो उसको अनुभव करके समझना पड़ेगा, है ना, बाहर जाके। और अशाश्वतम अस्थाई है भौतिक जगत, तो क्यों यह दुखालय में है, यहां पर बहुत ही जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। तो भगवान को जो प्राप्त करते हैं, नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः, सो जो मुझे प्राप्त करते हैं वो लोग फिर से, ऐसे महात्मा जो है फिर से इस भौतिक जगत में नहीं आते हैं। वो कहाँ जाते हैं, संसिद्धिं परमामगतः, सर्वोच्च गति को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर विशेष करके परमामगतः मतलब जो भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं, क्योंकि इस श्लोक पर यहाँ पर बोलते हैं, देखे यहाँ पर विशेष करके इस श्लोक में भगवान कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। महात्मा मतलब यहाँ पर निर्विशेषवादी या परमात्मावादी ज्ञानी योगियों का धर्म नहीं बता रहे, भगवान के जो शुद्ध भक्त है सकार रूप में उनका सेवा करते हैं, तो उनके बारे में, वो महात्मा है यहाँ पर। और आप इसको ऐसे लेंगे तो भगवान कृष्ण के गोलोक वृंदावन मतलब ये गौड़ीय वैष्णव महात्मा है, है ना, भगवान कृष्ण को वही प्राप्त करते हैं, है ना। नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः, वो पराम गति क्या है, कृष्ण लोक है, जिसके बारे में बाद में वर्णन होगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण श्लोक है। पहले हम लोग इसको सिखाते हैं कि ये भौतिक जगत क्या है, देखो, क्योंकि आप सीधा आध्यात्मिक जगत के बारे में भगवान के बारे में बोलेंगे तो क्या है, लोग वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी सोचने के परे जो चीज है वो उनको समझना मुश्किल हो जाता है, उनको स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा चीज के बारे में आप बताएंगे जो उनको अनुभव गम्य है, अनुभव में है, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो सभी लोग अनुभव करते हैं, तो इसलिए प्रभुपाद इसको बार बार बताया करते थे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बारे में। तो ये भौतिक जगत में जन्म मृत्यु हुआ और सभी शास्त्रों में इसके बारे में वर्णन हुआ, और पिछले अध्याय में ना जरा मरण मोक्षाय, जरा और मरण ये भौतिक जगत बुढ़ापा और मृत्यु का जगत है। तो साधन भक्ति को भी स्वीकार करने के लिए पहले यही चीज बताया जाता है ना, क्या क्या बताते हैं साधन भक्ति के लिए स्वीकार करने के लिए, रूप गोस्वामी जब वो वर्णन कर रहे थे साधन भक्ति को, वो श्लोक उल्लेख करते हैं जो सुखदेव गोस्वामी ने बताया था। वो श्लोक है ना, स्मर्तव्य कीर्तितव्य श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य श्रीचतो भया तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि स्मर्तव्य कीर्तितव्य श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य शिक्षतो भयाम, ऐसे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताया। आप मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, भगवान हरि को शरण लेना चाहिए, वो सर्वात्मा है, ईश्वर है, वो सबको नियंत्रण करने वाले, वो हरि है, हमारे कर्मों को पापों को हरण करके जाते हैं, वो भगवान है, शरण ऐश्वर्य पूर्ण है, उनके बारे में श्रवण कीर्तन और स्मरण करना, सभी आप मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए जन्म मृत्यु से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए, हमें भगवान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, ऐसे हम लोग वर्णन करते प्रचार करते हैं, क्योंकि जन्म मृत्यु तो सभी लोग नहीं चाहते हैं, वो लोग कोई चाहते है क्या, बिरला व्यक्ति इस जगत में भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं या भक्ति को स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन सभी लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होना चाहते हैं, है ना, और उसके लिए कोई उपाय नहीं है उनके पास, है ना, क्या उपाय है क्या उसके लिए, तकनीकी विज्ञान के द्वारा ऐसे आर्थिक विकास के द्वारा हम लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि को मुक्त हो सकते हैं, नहीं हो सकते, वो दूसरे अध्याय के आगे श्लोक में है ना, अर्जुन जब बताते हैं कि शरण में जाते हैं भगवान के, मैं अपने समस्याओं को आप ही सुलझा सकते हैं, प्रभुपाद जी वहां पर असली समस्या क्या है उसके बारे में वर्णन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि यह असली समस्या है, इनको आर्थिक विकास और तकनीकी के द्वारा आप नहीं सुलझा सकते, इस जगत में इस संसार में इतना कई सारे ऐसे देश है जहां पर तकनीकी और आर्थिक विकास बहुत कुछ हो चुका है, वहां पर भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, भारत के वासी अमेरिका जाना चाहते हैं लेकिन वो ये मूर्ख लोग समझते नहीं, अमेरिका लोग भी बुढ़े हो रहे हैं और मर रहे हैं, प्रचार करने के लिए जा सकते हैं आप, लेकिन ऐसे भौतिक भोग को प्राप्त करने के लिए जाते हैं, एक नंबर के मूर्ख है, निकम्मे है वो लोग, क्योंकि ये जानते नहीं कि वो लोग भी मर रहे हैं, उनके पास भी कोई उपाय नहीं है इसके लिए, तो ये हमें सबको बताना चाहिए, तब वह लोग ऐसे ही प्रचार किया जाता है, सुखदेव गोस्वामी भी ऐसे ही प्रचार किया और भागवत में ऐसे ही प्रचार किया उन्होंने, भक्ति रसामृत सिंधु में भी साधना भक्ति स्वीकार करने के लिए ऐसे, और यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। ज्ञान आरंभ कहाँ से होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्श, आप ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं या ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, पहले यह जानना चाहिए भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसका अनुभव करना चाहिए, उसका साक्षात्कार करना चाहिए, बहुत सारे लोग देखते हैं ये सब, पश्यन नपि न पश्यति, लेकिन फिर भी देखते नहीं, जैसे एनीवे वो सब बाद में भी हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे डॉक्टर लोग क्लिनिक्स अटेंड करने के लिए जाता है, हाँ लड़का लड़की जो पढ़ाई करता है औषधीय विज्ञान को, तो वो देखता है कितने सारे लोग पीड़ित है बहुत सारे रोगों से और मर रहे हैं, सुरभि वापिस आके क्या करता है, वो पार्टी मनाने के लिए लड़का लड़की जाता है। वो सोचता है कि मेरा जीवन ऐसे नहीं होगा, इतना मूर्ख लोग है वो, लेकिन वो भी मरना पड़ेगा, उसको भी मरना पड़ेगा, और उसका सुंदर स्त्री को भी बुढ़ा होना पड़ेगा और वो भी मरना पड़ेगा, है ना। कितना दिन तक समय चलता है वो, प्रभुपाद जी बोलते थे 40 साल, ज्यादा से ज्यादा 100 साल, है ना। कब तक ये अच्छा स्थिति रहेगा, है ना। तो ऐसे यहां पर तो आगे आ ब्रह्म गोणा लोक पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत के तो कौंतेय पुनर्जन्म न विद्यते। ये क्या है, ब्रह्म लोक जाने से भी ये जन्म मृत्यु से हम लोग मुक्त नहीं हो सकते हैं, वहां पर भी ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। तो प्रभुपाद जी इसको उल्लेख करते थे, आजकल बहुत प्रचलित है ना दूसरे लोकों में जाना, चंद्रयान मंगलयान, भारत भी मंगलयान करना कोशिश कर रहा था, मंगलयान करके जा करके क्या तुम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो सकते हो। प्रभुपाद जी दिस इज द डिफेक्ट ऑफ स्पेस प्रोग्राम। आजकल बहुत गर्वित है लोग ये स्पेस प्रोग्राम, अंतरिक्ष यान से बहुत वो गर्वित हो जाते हैं, ये हमारा देश का गर्व है, ऐसे वो नो क्या करते हैं ये लोग, जो ये बंगलोर में एक ऐसा है इसरो इसरो इसरो, तो वो क्या है इंडियन स्पेस साइंस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे संस्था है वो क्या बनाता है, रॉकेट बनाता है, वो जो अमेरिका के और रूसी जो सफेद बंदर है ये काले बंदर उसके उससे स्पर्धा कर रहे हैं कितना जंप मारेंगे हम लोग इस टाइम से कितने कौन से, है ना, ऐसे बंदर स्पर्धा करते रहते हैं ना, ये टहने से कौन सा दूर का टहने से कितना दूर हम लोग छलांग मारेंगे। ऐसे एक बंदर लोग क्या कर रहा है, तो प्रयास कर रहा है, उसके लिए कितना समय, कितना बुद्धि, कितने सारे धन व्यर्थ करते हैं लोग। और जब पूछा जाता है वो लोग पूछे कितना सारा टैक्स पेयर्स का कितना सारा धन व्यय हो रहा है, उससे अच्छा है कि कुछ समाज सेवा करना चाहिए, ऐसे लोग जब भी वो लोग एक रॉकेट भेजते हर बार ये जो लोग रिपोर्टर्स क्या बोलते हैं वार्ता पत्रकार लोग वो लोग पूछते हैं ये प्रश्न, तब उनका वो उत्तर क्या होता है, हमें हमारे देश की ओर से हमारा एक ऐसा स्वप्न होना चाहिए, ड्रीम, वी शुड हैव अ ड्रीम बोलते हैं वो लोग। और ये गर्व की बात है, हमारा देश भी ऐसे स्पर्धा कर रहा है छलांग मारने में ये गर्व की बात बोलते हैं। लेकिन गर्व की बात है तो गर्व इसके लिए करो कि मैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हुआ हूं करके, वो और भी गर्व की बात है ना, उसमें क्यों संशोधन क्यों नहीं करते हो, उसमें धन व्यय क्यों नहीं करते, उसमें क्यों समय 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 बिताते हो, क्यों ना समय बिताते हो, है ना। असली गर्व तो वो होगा ना, है कि नहीं। तो तुम ऊंचा लोग जाओ इतना रॉकेट बनाओ कुछ काम का नहीं है, अंत में तुम भी मर जाओगे और रॉकेट भी मर जाएगा, कुछ भी होने वाला नहीं। वो संशोधन करके क्या करोगे, रॉकेट भेज के क्या करोगे, कुछ फायदा है क्या, सिर्फ वेस्ट। ऐसे है अभी कलयुग में क्या लोग है सोचता है कि ये प्रगति के नाम पर ये सभी पूरा पथभ्रष्ट माया पहरत ज्ञान है, जीवन का प्रमुख मुद्दा जो है वो छोड़ देते हैं और ऐसे वे तथाकथित चीजों में लगे रहते हैं। तो इसलिए श्रीमद् प्रभुपाद इसको ये श्लोक को उल्लेख करके हमेशा कहते हैं कि जो यांत्रिक दृष्टिकोण से दूसरे लोक में जाना भी क्या है, वो जन्म मृत्यु के लिए हल नहीं है, उपाय नहीं है। मनुष्य जीवन में इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो मनुष्य जीवन क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। पराभवस्थावद अबोध जाता यावान जिज्ञासता आत्म तत्वम, जब तक आत्म तत्व के बारे में जिज्ञासा नहीं करते हो पराभव पराजय हो गया, जीवन व्यर्थ हो गया। या अज्ञान के कारण, जिज्ञासा न करने के कारण अज्ञान हो जाता है, अबोध जाता, अबोध के कारण क्या हो जाता है, बहुत सारे ऐसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि का सृष्टि हो जाता है। तो उससे हम लोग मुक्त नहीं हो सकते जब तक आत्म तत्व के बारे में जिज्ञासा नहीं करेंगे। तो ऐसे ऊंचे लोक में जाना, ब्रह्म लोक में भी जाएंगे तभी क्या होने वाला, फायदा कुछ फायदा नहीं। तो इसलिए ये सभी स्पेस प्रोग्राम क्या है, सब बेकार का बकवास है ये सब। तो प्रभुपाद जो चंद्रमा चंद्रयान के बारे में इतना, वहां पर जाके ये लोग पत्थर लेकर आया, वो पत्थर तो यही पर उपलब्ध है, क्यों चाहिए वो, है ना। ये पत्थर लेके आने के लिए इतना क्यों प्रयास करना चाहिए, इतना उग्र कर्म क्यों करना चाहिए, इतना बड़ा रॉकेट बनाओ, उसके लिए फैक्ट्री लगाओ, ईंधन का निकालो, क्या क्या होता है। लोग ऐसे उग्र कर्म में लगना उसको प्रगति मानते हैं लोग, ऐसे गधा मानना, बीस्ट ऑफ बर्डन, ये जीवन का प्रगति मानते हैं लोग। तो और इसका दूसरा अर्थ यहां पर क्या है, जो लोग ब्रह्मलोक भी जाते हैं वहां से मुक्त नहीं हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, फिर से इस मर्त्यलोक में वापस आना पड़ेगा, पुनरावर्तिन अर्जुन, फिर से यहां पर आना पड़ेगा। तो जनरली ऐसे यहां पर वो श्लोक उल्लेख कर रहे हैं ना, तो छांदोग्य उपनिषद में ऐसे वर्णन आता है, छांदोग्य उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है उसे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है, किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौट के आना पड़ता है। मधु संप्रदाय में ऐसे है, उनका धारणा, मुक्ति का धारणा कैसे होता है, पहले वर्णाश्रम को पालन करके, ऐसे छांदोग्य उपनिषद में जो दिए गए ऐसे चीजों को पालन करके एक व्यक्ति को ब्रह्मलोक में जाना चाहिए और वहां से हम लोग भगवान के धाम जा सकते हैं, ऐसे उनका धारणा है। लेकिन हमारे संप्रदाय में क्या धारणा है, कैसे हम लोग मुक्त होते हैं, यहाँ पर परिपूर्ण कृष्ण भावनामृत में परिपूर्णता को प्राप्त कर इसी भौतिक जगत में भी एक अलग ब्रह्मांड में जहां पर अभी भगवान लीला करते रहते हैं वहां पर प्रवेश करके उनके साथ जो नित्य सिद्ध भक्त है वो भगवान के साथ लीला करने के लिए जो भगवान के धाम से आते हैं उनके मार्गदर्शन में और प्रशिक्षण लेके या थोड़े बहुत जो भी है ऐसे जो कलमश बचे रहते हैं उससे मुक्त होकर हम लोग भगवान के जो नित्य लीलाएं है या मतलब जो धाम में उनके वहां पर प्रवेश करते हैं। तो ऐसे होता है और यहाँ पर जो उच्चतर लोक में कृष्ण भावना प्रगति करते हैं वे क्रमशः और ऊपर जाते हैं, जाते रहते हैं और प्रलय के समय में नित्य पराधाम को भेजे जाते हैं, ये ऐसे उनके बारे में मधु संप्रदाय के अनुसार ऐसे धारणा होता है। प्रलय के समय में वो ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रति संचरे परस्यांते कृतात्मनः प्रविशन्ति परम पदम। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रगत अनेक उनके भक्त अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोकों को भेजे दिए जाते हैं। सहस्रयुग पर्यन्तम् आहर्य ब्रह्मणो विदुः रात्रि युग सहस्रान्तम् तेवो रात्र विभोजनः। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बन जाता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तो यहाँ पर अब एक कल्प का वर्णन किया है, कल्प मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं, 1000 दिव्य युग या महायुग को एक कल्प कहते हैं। दिव्य या महायुग मतलब कितना होता है, ये पूरा 4 युग का जो चक्र है उसको एक दिव्य या महायुग कहते हैं। तो कितना होता है, कलियुग का, कलियुग 432,000, इतना उस कलयुग का अवधि होता है और इसके दो गुना द्वापर युग होता है। इसको मैथमेटिक्स बना दीजिए आप सब ठीक तरह से अपने बुक में कितना कितना होता है और दो गुना द्वापर युग होता है 864,000 और त्रेता युग इसका तीन गुना होता है 12,96,000 साल और कृता युग और या सत्ययुग क्या होता है 4 गुना होता है इससे कितना होता है 17,28,000 सो कुल मिला के तो कितना हो जाता है 43,20,000 साल होते हैं कुल मिलाकर। ये इसको 1,000 गुणाकार करेंगे तो क्या हो जाता है ब्रह्मा जी का एक दिन बन जाता है। तो उसको वो भी गुणाकार कीजिए आप मैथमेटिक्स। हम गुरुकुल में ऐसे मैथमेटिक्स सिखाना चाहते हैं भगवद गीता के द्वारा। बहुत सारा है ना ऐसा, बहुत भगवद गीता में बहुत सारा है ऐसे गुणाकार करना वगैरह। वो ब्रह्मा जी के जीवन को कैलकुलेट कर लिया तो उनका गणित परिपूर्ण तो हो गया। उससे भी ज्यादा ले सकते हैं क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसके बारे में गणित का बहुत वर्णन हुआ है। ज्योतिष शास्त्र कल्पना भी नहीं कर सकते, आधुनिक जो गणित शास्त्र के जो है वो कल्पना भी नहीं कर सकते वो उतना। 4,32,00,000,000 साल ब्रह्मा जी के एक दिन हो गया, ऐसे उनका रात भी होता है। उसको दो बार गुना कीजिए, गुणाकार कीजिए और उनका 30 दिन ऐसे 30 दिन उसको 30 गुणाकार कीजिए 1,000 × 2 × 30 × 12 दैट इज 1 ईयर इंटू 100 इज 1 ईयर 1 लाइफ ऑफ ब्रह्मा। अभी ब्रह्मा जी के 50 साल हुए हैं, 50 साल के जो पहला दिन है अभी चल रहा है, पहला दिन के द्वितर हो गया है क्योंकि एक दिन में 14 मनो आते हैं ना, अभी सातवां मनोअंतर है तो ये सब चीज वर्णन है। तो ये सब चीज कहां पर वर्णन हुआ है? यहां पर तो वर्णन हुआ है, अन्य जगह शास्त्रों में कहां पर वर्णन हुआ है? भागवत में वर्णन हुआ है और ज्योतिष शास्त्र में वर्णन हुआ है। ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही विस्तार से इनके बारे में वर्णन आता है, काल के बारे में। तो दो ज्योतिष शास्त्र है, प्रमुख ज्योतिष शास्त्र है, एक सूर्य सिद्धांत और सिद्धांत शिरोमणि। इन दोनों शास्त्रों में इनके बारे में विस्तारित हुआ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इन दोनों शास्त्रों को सिर्फ जो जब वो 17 साल से जब 17 साल के थे तब उन्होंने अनुवाद और उसके ऊपर टीका लिखना शुरू कर दिया, और जब वो 21 साल के थे तब उनको अनुवाद कर बंगला भाषा में, संस्कृत से बंगला भाषा में उसको अनुवादित करके उसके ऊपर टीका लिखा। उसको उनकी विद्वत्ता को देखकर उनके गुरुजनों ने क्या किया, ज्योतिष के गुरुजनों ने उनको क्या दिया, सिद्धांत सरस्वती करके शीर्षक दिया उनको। तो ये सब चीज वर्णन हुआ है। तो अगला यहां पर हुआ है एक और चीज तात्पर्य में श्लोक कहता था, इन 4 युगों के लक्षण भी बताते। सतयुग में क्या था वो वर्णन करते हैं, सतयुग में सदाचार ज्ञान तथा धर्म का बोला भाला रहता है और अज्ञान तथा पाप का एक तरह नितांत अभाव होता है, कुछ भी नहीं रहता है वहां पर पाप। सो धर्म सदाचार ज्ञान सब कुछ रहते हैं। और त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है और द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का ह्रास होता है और पाप बढ़ते हैं और सबसे अंत में कलयुग आता है जिसमें कलह अज्ञान अधर्म तथा पाप का प्राधान्य रहता है और सदाचार प्राय लोप हो जाता है। इसके बारे में विस्तार से श्रीमद् भागवतम में 12वें स्कंद में वर्णन आता है। और प्रथम स्कंध में भी वर्णन आता है, तो प्रथम स्कंध में भी वर्णन आता है और बारहवें स्कंध में भी वर्णन आता है कैसे कलयुग में लोग नास्तिक होते हैं, गायों का हत्या करते हैं, सिर्फ बहुत जोर जोर से बोल के सबको मना देते हैं, सब लोग उनको स्वीकार सत्यत्वम धार्ष्ट ये बचा Someone who speaks boldly is considered as truth. हालांकि वो बकवास बोलता है लेकिन फिर भी, और सब लोग बालों को सजाना ही सुंदरता मानते हैं, और आगे जाके ऐसा ही भी होगा, बच्चा जन्म दे माता जन्म देगी बच्चों को खाने के लिए, ऐसा भी होता है। तो ये सब चीज वर्णन होंगे कलयुग। तो हमेशा अनावृष्टि अतिवृष्टि इसका ही, इससे लोग पीड़ित रहते हैं। तो और जो नेता होते हैं प्रजा को सिर्फ भक्षण करते रहते हैं, तो प्रजा इससे तंग होकर गिरिकाननम जो इन्हों पर्वत और कंदराओं में जाके आश्रय ग्रहण करते हैं, है ना। इसके आधार पर भी हम लोग समझ सकते हैं हमारा फार्म कम्युनिटी में बहुत सारे लोग आएंगे। ठीक है, तो ये सब कलयुग का लक्षण है। इस अव्यक्तम अव्यक्तागव्यक्तया सर्व प्रभवन्त्या रागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रव्य। देर हो गया, हम लोग बाद में इसको चर्चा करेंगे। तो 4 बजे फिर से मिलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। कोई प्रश्न टीका टिप्पणी? कर्मकांड का विशेष करके मतलब वर्णाश्रम के नियमों को पालन, कुछ नियमों को पालन करते हो, विशेष करके वो लोग गृहस्थी रहते हैं, और विशेष करके गृहस्थी रहते हैं और कर्मकांड का पालन करते हैं, और उनको योगी नहीं कर कह सकते, उनको कर्मयोगी नहीं कह सकते हम लोग, वो सकाम कर्मी है वो लोग, क्योंकि उनका उद्देश्य होता है कि अलग अलग प्रकार के यज्ञों को करके पुण्य कर्म करके ऊंचा जीवन प्राप्त करना, वो उनका लक्ष्य होता है। या तो या उतना ही पालन करते हैं, और वेदों को कुछ बात को स्वीकार करते हैं, और वो लोग ये सब उपनिषद और जो ब्रह्म का जो ज्ञान है उसको नकार देते हैं वो, और ज्ञान का जो ये जो कर्मकांड जो नहीं कर पाते हैं वो लोग क्या है दुर्बल लोग मानते हैं उनको, या एस्केपिस या दुर्बल है वो लोग, योग्य नहीं है कर्मकांड को पालन करने के लिए, उनके पास साधन नहीं है और योग्यता नहीं है, इसलिए वो लोग ऐसे मार्ग अन्य मार्ग ज्ञान मार्ग में, ज्ञान मार्ग मतलब ब्रह्म जिज्ञासा उपनिषद में जो वर्णन आता है। या वो कर्म सन्यासी है, वो मायावादी लोग नहीं, मायावादी लोग क्योंकि भगवान के प्रति अपराध करते हैं वो लोग यहाँ पर ब्रह्मवादी उनको बताएगा, यहाँ पर ज्ञानी मतलब ये ब्रह्मवादी है। तो कभी कभी अलग अलग शब्द उपयोग किए जाते हैं, निर्विशेषवादी मायावादी मतलब वो लोग भी निर्विशेषवादी है, लेकिन वो भगवान का रूप को क्या मानते हैं, माया मानते हैं। तो जैसे कल चर्चा कर रहे थे, तो ऐसे 4 प्रकार के निर्विशेषवादियों के बारे में वर्णन हुआ है। पहला निर्विशेषवादी है वो मायावादी है, वो बहुत ही खतरनाक है, वो कभी भी भगवान को भक्ति को स्वीकार नहीं करते, वो भक्ति करने का जरूरत नहीं हो वो क्या? और भगवान का शरीर को दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप को स्वीकार नहीं करते वो लोग। वो दूसरे प्रकार के मायावादी है, वो लोग भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप का स्वीकार नहीं करते, निर्विशेषवादी। वो पहले प्रकार के मायावादी होते हैं, दूसरे भी मायावादी है, दूसरे निर्विशेषवादी भी मायावादी है। वो लोग भी सच्चिदानंद स्वरूप को स्वीकार नहीं करते हैं, और वो लोग लेकिन वो लोग हमारे जो ब्रह्म में लीन होने का गंतव्य को प्राप्त करने के लिए हमें भक्ति का थोड़ा जरूरत होता है, ऐसे वो लोग। और तीसरा, जैसे यहाँ पर इस तात्पर्य में कहते हैं ना, भक्ति का मिश्रण रहता है, ऐसे प्रभुपाद एक यहाँ पर 14वें श्लोक के तात्पर्य में। और तीसरा है ब्रह्मवादी, जो भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को स्वीकार करते हैं लेकिन उनको आकर्षण नहीं रहता, उसको वो निराकार ये ज्ञान नहीं, उनको ज्यादा आनंद मिलता है, निराकार का लिए उपासक होते हैं। तो वो लोग ऐसे निराकार ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। और चौथे है ऐसे निराकारवादियों में, निर्विशेषवादियों में, तीसरे प्रकार के जो ब्रह्मवादी होते हैं, वो लोग भगवान के भक्त के संपर्क में आकर या भक्ति के संपर्क भगवान के संपर्क में आकर भगवान का भक्त बन जाते हैं। तो ऐसे चार प्रकार के निर्विशेषवादियों के बारे में वर्णन हुआ है। तो पहले जो दो लोग है वो लोग ब्रह्म में लीन नहीं होते, ब्रह्म में नहीं जाते वो लोग नरक में जाते हैं। मायावादी चेतन चित्तामृत में ऐसे वर्णन है ना, हालांकि वो लोग उनका लक्ष्य ब्रह्म में लीन होना होता है, लेकिन क्योंकि वो भगवान के प्रति अपराध करते हैं, मायावादी कृष्ण अपराधी खरे दंडे, ऐसे श्लोक है ना चेतन चित्तामृत में, वो कृष्ण के अपराधी है इसलिए उनको यमराज है दंड देते हैं उनको। ऐसे लेकिन हाँ, अभी वो देखो चंद्रशेखर इंद्र स्वामी थे, वो हर रोज वो भक्ति करते थे, वो तो हर रोज वो क्या करते थे, वरदराज को वो दर्शन करने के लिए जाते थे हर रोज। और ज्यादा से ज्यादा जो होते हैं ना, जैसे महाप्रभु ने जब मायावादी मिले प्रकाशन, उनको पता था कि शंकराचार्य गलत है, वो बाद में वो बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने उनके संस्था में उनके संप्रदाय में दीक्षा ले इसलिए वो ये सब कर रहे थे। हम लोग सब लोगों को पता रहता है ये सब गलत है करके बाहर अंदर अंदर से। अभी मैं वो महाराज वो बुक पढ़ रहे थे ना, वो चंद्रशेखर इंद्र स्वामी जी के, वो मेरे पास भी है वो बुक। एक्चुअली निराकार वर्णन ही नहीं कर सकते वेदों को, ऐसे हम लोग वी कैनॉट इंटरप्रेट वैदिक स्टेटमेंट्स, ऐसे इंटरप्रेट कर ही नहीं सकते वो। जैसे वेद के बारे में, वो वेद कैसे प्रकट हुए उसके बारे में वो श्लोक चांदोग्य बृहदारण्यक उपनिषद का उल्लेख करेंगे, अस्य मार्गस्य भूतस्य निश्वासितम् यद् ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेद अथर्वांगिरस, ऐसे कहा गया। वो वेद क्या है, भगवान का श्वास है, वो उनका श्वास है, तो क्या है वो, कैसे व्यक्ति होना चाहिए ना, है कि नहीं? लेकिन वो लोग क्या कहते हैं, वो प्राण के समान है, उसको कुछ अलग ऐसे अलग है, लेकिन प्राण भी है तो व्यक्ति होना चाहिए ना। या लेकिन कैसे आप उसको, कुछ उस श्लोक को कैसे समझेंगे आपको, भगवान को है, भगवान निराकार है तो कैसे, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट। लेकिन तब ऐसा बोलते हैं तो वो तुरंत ही वाद विवाद करने का कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो वेद को क्या है, वो अपौरुषेय नहीं हो सकता, वेद का सृष्टि हो गया ऐसे होता है, और तुरंत ही वो उनका वाद विवाद करना नष्ट हो जाता है। ही बिकम्स अ रैस्कल। या तो बकवास अभी बंद करो, अभी कुछ मत बोलो तुरंत। ही कैन नॉट इंटरप्रेट वैदिक स्टेटमेंट, इसीलिए थोड़ फोड़ कर दिया हमारा आचार्य लोगों ने, थोड़ फोड़ कर दिया उसको। क्यों नहीं अटेंडिंग कर? शंकराचार्य ने भी लेकिन हाँ, लेकिन चांदा के उपनिषद में ही ऐसे कहा गया है कि ये पंचम वेद है का। नो, उसके ऊपर भी वो भी वो चांदा के उपनिषद भी एक दस उपनिषद में है, प्रमुख उपनिषद, उसके ऊपर भी शंकराचार्य ने टीका लिखा है। तो प्रमुख है ना, प्रमुख, वो भी प्रमुख उपनिषद है, वो निम्न उपनिषद नहीं है, वो श्रुति का। तुम कुछ भी बोलते हो, भगवान के मुख से आया है, गीता भी भगवान से मुख से आया है, वो भी कुछ कम नहीं है, वो भी कुछ कम नहीं है। भगवद गीता क्या है, इसलिए हम बार बार यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, भगवान सर्वोच्च अधिकारी है ज्ञान के ऊपर, उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो सर्वोच्च है। क्यों व्यक्ति कैसे पता चल गया कि भगवान की व्यक्ति है करके? नहीं, वो छोड़े, पर्सनल इम्पर्सनल बाद में चर्चा करेंगे। भगवान साधारण व्यक्ति है करके कैसे पता चल गया तुमको, वो तो हमारा क्वेश्चन है, कहाँ से पता चल गया? ये ज्ञान कृष्ण के बारे में, ज्ञान कैसे आता है? परंपरा में और वेद शास्त्रों से आता है, वेद शास्त्रों में उनको साधारण पुरुष नहीं माना गया है ना, है ना, वेद शास्त्रों में उनको साधारण पुरुष नहीं माना गया। ओम तद विष्णु परमं पदं पश्यन्ति सूरय, ऋग्वेद में भी ऐसे बताया गया है, वह पुराणों में ऐसे बताया, वेद रामायण च पुराण भारत का आदो अंत मध्य च हरि सर्वत्र दिए थे, भगवदगीता में मत्त परक्रम नानक, कहीं भी ऐसे बताया नहीं गया कि वो साधारण व्यक्ति है। तुमको कहां से पता चल गया कि तुम कैसे कह सकते हो कि वो है ना सामान्य व्यक्ति है करके? विष्णु कृष्ण हम लोग बोल रहे हैं, हरि सर्वत्र दिए थे, वो विष्णु है, है ना? नहीं, आप ऐसे में नहीं निकल रहे, आप ऐसे, हम सीधा अर्थ बता रहे हैं, आप ऐसे, आपका क्या आधार है, आप जो मैंने निकाल रहे उसका क्या आधार है? हमारा जो मैंने निकाल है, हम वो आधार प्रदान कर रहे हैं, हरी सर्वत्र दिए थे, हरी का नाम आया, नहीं, ये हम वेदों से निकाला है, वो उनका विष्णु परमम पदम, उनका पद है, उनका उनका धाम है, धाम निराकर, तो निराकर का धाम होता नहीं है। आपका जो वाद है उसके उसको प्रमाण दीजिए पहले, आप अपने गलत और अर्थ बता रहे हो, कहां से पर, पहले कहां से पर, आप कैसे कह सकते हैं कि वह साधारण व्यक्ति, उसको पहले से बताइए। नहीं नहीं, वो आप बताइए कैसे कृष्ण साधारण व्यक्ति है करके पहले सिद्ध करो, बाद में आगे चर्चा करेंगे हम वो नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ भी ना, कृष्ण के बारे में अगला प्रश्न क्या आता है, कृष्ण के बारे में कैसे ज्ञान हुआ आपको, वो साधारण व्यक्ति कह रहे, कहां से यह प्राप्त हो गया आपको, किसी ने बताया या आपने कल्पना किया मन में? लेकिन तुरंत ही वो कल्पना, कल्पना का ज्ञान और किसी ने वो कोई ऐसे कोई, जैसे हम लोग औषध लेते हैं तो किसी का राय से नहीं लेते, हम डॉक्टर का राय से लेते, तो मार्ग ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग पहले सिद्ध करना चाहिए। आप जो भी कृष्ण के बारे में बोलते हैं तो तुरंत ही वो कट जाता है, वो कृष्ण के बारे में कैसे ज्ञान को प्राप्त किया जाता है या वेदों का ज्ञान कैसे प्राप्त, वो सिद्ध होना चाहिए। नहीं, आप परंपरा है तो अपना रखिए, लेकिन कृष्ण के बारे में कुछ मत बोले। कृष्ण के बारे में बोलना है तो सही मार्ग से बोलना है, सही रीति से ज्ञान प्राप्त करना है। सही रीति से वो नहीं चलेगा। यू आर गेटिंग माई आर्ग्यूमेंट, मेरा तर्क आप समझ रहे। जब भी कृष्ण का नाम लेके कुछ बोलते हैं तो तुरंत ही आपको मुंह बंद करना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण के बारे में ज्ञान लेना है तो इनके यहां से लेना है, नहीं तो कृष्ण के बारे में मत बोलो। डोंट स्पीक अबाउट कृष्ण, है ना। यहां से लेना है तो तुरंत ही वो सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण भगवान है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, उनकी लीलाएं ये नहीं है, तुरंत ही सिद्ध हो जाएगा। कृष्ण का नाम लेके कुछ नहीं बोलने का। तुम अपना बनाओ, अपना भगवान बनाओ, कुछ भी बनाओ, ब्रह्मा अल्लाह कुछ भी बनाओ तुम, वो दूसरी बात है, फिर बाद में चर्चा कर सकते हैं। आपकी भगवान का धारणा क्या है, आपके अल्लाह का परिभाषा क्या है, धारणा क्या है, और कृष्ण का परिभाषा क्या है, कैसे भगवान कृष्ण परम सत्य है, वो वेदों के सभी ज्ञान का लक्ष्य है, वो ज्ञान के ऊपर अधिकारी है, वो पूरा भगवान के परम सत्य का जो भी परिभाषा है वो उसमें उसको पूरी तरह से वो सिद्ध होते हैं, और सभी देवताओं से श्रेष्ठ है, सभी अवतार उनसे आते हैं, वो रसों का सागर है, ये हमारा परम सत्य का परिभाषा है, और कैसे भगवान इसमें पूरी तरह से सिद्ध होते हैं। तुम्हारा आपका परिभाषा क्या है परम सत्य का, पहले परम सत्य का परिभाषा दे दो, बाद में कौन है वो बाद में चर्चा करेंगे। वो अलग चीज है, सी वो नहीं, वो जब बोल दिया ना उनको आसानी से कर सकते हैं। आपको कैसे पता चल गया दूसरों की लड़की के साथ भाग करके कैसे पता चल गया बताओ। हाँ, वही शास्त्र बताते हैं, वही शास्त्र बताते हैं कि ये लोग जो लीला है दिव्य है, वो साधारण व्यक्ति नहीं, साधारण पुरुष के नहीं, बीच में जो ये है नहीं, वो लीला में क्या वर्णना है बताओ। वो इतने सारे गोपियों के साथ एक साथ नाच रहे थे ब्रह्मा जी के एक रात तक, क्या तुम वो कर सकते हो क्या? इसलिए वो भगवान है, वो रासलीला करते हैं इसलिए वो भगवान है। तो भगवान कृष्ण के बारे में मत बोलो, पहला पॉइंट। भगवान कृष्ण के बारे में बोलना है तो तुरंत इनको स्वीकार करना, इनको स्वीकार करना मतलब उनकी दिव्यता को स्वीकार करना, उनकी परमता को स्वीकार करना पड़ेगा, ऐसे बकबक नहीं करने का। हु कैन डिफीट अवर फिलोसफी, हु कैन डिफीट अवर फिलोसफी, कौन मायावादी, कौन दूसरे धर्म वाले, कौन इसके, उनको वाद विवाद में कोई हम लोगों को हरा नहीं सकते। सिर्फ जस्ट जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवद गीता अच्छी तरह से पढ़िए आपको, अच्छी तरह से तात्पर्य वगैरह कैसे है ना, ये सब गुना हम बता रहे हैं ना, परम सत्य का क्या क्या परिभाषा है, ये सब भी तात्पर्य में है। मैं हाल ही में कृष्ण जन्माष्टमी से पहले एक सेमिनार लिया, भगवान कृष्ण परम सत्य है, ऐसे सिस्टमेटिकली पहले से कैसे आरंभ होता है, वो ज्ञान का लक्ष्य है वेदों का। हाँ, परिपूर्ण ज्ञान वेदों में आता है, वेद का लक्ष्य क्या है, भगवान कृष्ण, वेदे रामायण चैव वेदेश्च सर्वे रामेव वेद्यो, तो उनका वो लक्ष्य है, और ज्ञान के ऊपर वही अधिकारी है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे हम लोगों ने कल चर्चा किया ना, कहाँ कहाँ पर ये ज्ञान के अधिकारी बताया गया, पुरुषोत्तम कहते हैं इस अध्याय के आरंभ में, आप ही मेरे संशय से मुक्त कर सकते हैं। और मायावादी वेदों में दो स्कूल है, एक पर्सनल सकारवादी निराकार, दोनों स्वीकार करते हैं भगवान कृष्ण को, नहीं नहीं हम लोग ज्ञान के संबंध में देख रहे हैं, वो लोग भी भगवद्गीता से उल्लेख करते हैं, वो लोग भी भगवद्गीता के ऊपर टीका किया है, वो भगवद्गीता टीका में शंकराचार्य ने भी बताया वो परम है कर, दोनों स्वीकार करते हैं पर्सनल सारी पर्सनल, इसीलिए वो ज्ञान के ऊपर अधिकारी है, वेद मतलब ज्ञान, ये हमारा परम सत्य का परिभाषा ऐसे आरंभ होता है। फिर उसके बाद में जितने भी भगवत्ता का जो परिभाषा है, वो परम नियंता है, भगवान कृष्ण कैसे परम नियंता है, वो परम भोक्ता है, वो वो कैसे भगवान कृष्ण परम भोक्ता है, वो सबका स्रोत है। भगवान कैसे होते हैं? सबका स्रोत होते हैं। गॉड इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। भगवान कृष्ण कैसे हुए? हम सर्वस्य प्रभव हो जन्माद्यस्य यतः। यस, अब जो भी भगवान का परिभाषा है वो उसको पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है। ही कंफर्म्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ। और उसके बाद में वो देवी देवताओं से भी परे है, सभी अवतार उनसे आते हैं। और एक वो हिंदू भगवान नहीं है, सेक्टेरियन नहीं है भगवान। भगवान मतलब सेक्टेरियन नहीं होते, इज गॉड फॉर एवरीवन। इसलिए वो बोलते हैं अहम बीज, ही इज द फादर ऑफ एवरी ऑल लिविंग एंटिटीज, है ना। अहम इज बीज माम सर्वभूता नाम, वहां पर उस तात्पर्य में वो कैसे भगवान कृष्ण सभी के पिता है, तो ये सब वर्णन करना चाहिए। ऐसे ऐसे परम सत्य का परिभाषा और कैसे भगवान कृष्ण ऐसे परम सत्य है कौन वर्णन कर सकते हैं? क्या वो अल्लाह के बारे में ऐसे वर्णन कर सकते हैं? वो अल्लाह तो भगवान कृष्ण है, लेकिन पॉइंट क्या है? आपके बारे में, आपके जो ज्ञान है भगवान के बारे में, वो कुछ भी नहीं है इसके सामने, भगवद गीता के सामने। मायावादी लोग भी ऐसे समझ नहीं सकते। अल्लाह मटेरियल लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उनके पास नहीं है। उपनिषदों को पढ़ने से ही पूर्ण, वो पूर्ण मतलब पूर्ण निगम, वो पूर्ण है तो उनमें कुछ कमी हो जाएगा। उनके पास ये नहीं है तो, है ना, वो कैसे पूर्ण होंगे? उपनिषद ही पढ़िए आप, उपनिषद लीजिए, वो कैसे होंगे पूर्ण कंप्लीट? वेल, वो सबका स्रोत है तो आकार का भी स्रोत होना चाहिए। वो क्या तर्क है आपका इसके लिए? आपका क्या परिभाषा है भगवत्ता का? पहले परिभाषा बोलो। कुछ भी नहीं है लोगों को, कुछ भी ज्ञान है। गीता आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे ना, यहाँ पर भी ये सब कंप्लीट होल पूर्ण वगैरह सभी भूमिका में गौपा जी ने बताया है ना, है ना। अन्य बागड़े के अन्य उपनिषद वेद जाने तो वैसे लोगों को तो आप प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन वो हम लोगों को रोक नहीं सकते, है ना। आप नहीं जाना चाहते तो ठीक है, हम लोग प्रचार कर सकते नहीं। आप हमें अंदर पार्ट निकालना चाहते हैं, हमारे साथ वाद विवाद करते हैं, आ जाओ, वाद विवाद करेंगे, वाद विवाद करेंगे। लेकिन हम लोगों को रोक नहीं सकते, वो लेना नहीं चाहते तो हम उसको बाध्य नहीं कर सकते, है ना। भगवान भी बाध्य नहीं करते, है ना, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन क्या सत्य है, सत्य अनुसंधान करना चाहते हैं तो आ जाइए, चर्चा करेंगे। सत्य क्या है उसके बारे में आप, हम इसलिए कल बता रहे थे, ये सेक्युलरिज्म धर्म निरपेक्षवाद मतलब क्या है? सत्य अनुसंधान करने के लिए वो लोग लेजी है और वैदिक है, क्योंकि वो उनका जो इंद्र तृप्ति और आसक्ति है उससे वो उसका पर्दा खुल जाएगा, वो इसलिए वो नहीं करना चाहते। ठीक है, वो स्वीकार, लेकिन जब सत्य के ऊपर चर्चा करते हैं तो वो हम लोगों को सामना नहीं कर पाएंगे।
नेगेटिव एस्पेक्ट को जाते हैं, हाँ, नेगेटिव एस्पेक्ट को करके रखते हैं, जैसे कि जब लड़के को मौके पर आती है
नहीं, उसके पहले रूप क्या आया, उससे पहले भगवान क्या है, आपका क्या धारणा है वो बताइए, आपका क्या परिभाषा क्या है, भगवान मतलब क्या है आपके लिए, गॉड मतलब क्या है बताओ। आपको पता नहीं है तो आप हमसे आके सीखिए, हम लोग सिखाएंगे आपको क्या है भगवान मतलब, हम आपको अच्छी तरह से सिखाएंगे सिस्टमेटिकली। भगवदगीता में ऐसे मत पराक्रम बताया गया, बहुत सारे भगवान के, बहुत सारे भगवान नहीं होते, वो भगवान का अंग श्रद्धा है। वो लोग जो करते हैं वो अलग है, लेकिन हम फिलॉसफी जो है वो नहीं है। आप ज्ञान के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान वो लोग क्या करते हैं, बहुत कुछ करते हैं लोग, बहुत सारे पुस्तक है, तो बहुत सारे ज्ञान का लक्षण है, ज्ञान का लक्षण है। आपका क्या है, सिर्फ ये भी सीधी है बस, तो दैट इज नॉट डिबेट, दैट इज नॉट डिस्कशन, दैट इज तामसिक लोग, तमोगुण के लोग है वो। ऐसे मारपीट करना, उग्रवाद करना, वो सब वो ज्ञान है और सत्य अनुसंधान नहीं है वो, उसके लिए कुछ नहीं है। लेकिन या ऐसे होता है, भड़काया जाता है बस, मूर्ख लोग हैं। इसलिए हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से उसको प्रशिक्षण का बहुत महत्वपूर्ण है, उसको अच्छा सिस्टमेटिक प्रेजेंट करना चाहिए। फिलॉसफी जीव गोस्वामी बहुत सिस्टमेटिकली प्रेजेंट किए। इंटरनेट वो ठीक है, इंटरनेट से कुछ प्रभाव होता नहीं, नेगेटिव प्रभाव होता है वास्तविक रूप लेकिन उतना वो ये नहीं कर पाएगा। हम लोग एक्चुअली इसका ना जो प्रभुपाद जी बिताया है वो सब अच्छी तरह से स्वीकार करके वो लोग प्रचार करेंगे ना, बहुत कुछ होगा। कौन पढ़ रहा है ऐसे भगवदगीता को, ऐसे कौन प्रस्तुत कर रहे हैं, और जो प्रभुपाद जी ने दिया है प्रचार का माध्यम जो दिया है, ऐसे गुरुकुल वगैरह सब कुछ बना है ना, ये धर्म, ये इस्लाम क्रिश्चियन पूरा नष्ट हो जाए। कुछ ही अब ज्यादा जरूरत नहीं है, 20-30 साल में इसका प्रभाव कितना होगा वो कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर से भारत वो मूल स्थिति में आ जाता है।
कुछ कारण जैसे
क्या है, तो ये उससे हम लोग समझ सकते हैं कि हमें, हमारे पास जो इतना परिपूर्ण ज्ञान है उसको कितना अग्रेसिव है हमें प्रचार करना चाहिए। हम लोग उसको नहीं कर रहे, अग्रेसिवली नहीं कर रहे हम लोग। जी हाँ,
हमारे इसको हम रोकेंगे और अवैध धर्म को बचाएंगे, और हमको सबसे उठाना पड़े और हम मर भी जाएंगे तो उसमें कुछ गलती नहीं है, हमको सब फिर कर
जी हाँ। कितने सालों से चल रहा है वो, कोई उसको चलो हम लोग करेंगे हाँ। पहला एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए गुरुकुल होना चाहिए, ब्रह्मचारी आश्रम गुरुकुल वगैरह होना चाहिए। ठीक है चलिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।